प्रातः क्लास चल रहा था 31/3/1967 शुक्रवार को चौथे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। तुम बच्चों को एक ही फुरना रहती है, सर्विस कैसे करें? कोई न कोई फुरना होती है ना, बस ईश्वरीय सेवा करें। बाबा को याद करें और सत्व प्रधान बने। और बाबा तो बताया ही है कि माम एकम याद करो, सत्व प्रधान बनने के लिए माम एकम याद करो। कोई द्विजम तीजम चौथम और किसी को याद न करो। क्यों? दूसरों को याद करने में क्या ईर्ष्या आदेश आ रहा है? है? क्योंकि एक ही है जो शिव समान बनता है, संपूर्ण बनता है और संगम युगी शूटिंग पीरियड में जब से संपूर्ण बनता है तब से अंत तक उल्टी सीढ़ी चढ़ रही है ना, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तीनों काल जब क्रॉस हो जाता है तब तक सतो प्रधान स्टेज में ही रहता है। फिर तो शूटिंग काल ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे को याद करेंगे जो पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते आखरी शिव समान स्टेज को पा लेता है, जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ। तो जो शिव है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, क्योंकि वो ही एक आत्मा है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। और हम सब आत्माएं मनुष्य सृष्टि पर जो भी हैं, पार्ट बजाने वाली, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पिछले जन्मों की सारी बातें भूल जाते हैं। खास करके जो सृष्टि चक्र में महामृत्यु का टाइम आता है, वो एक ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है, दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सीडेंट। कि जिस एक्सीडेंट के बाद हम आत्माएं सब कुछ भूल जाती है, यहां तक कि जो मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर आत्मा है, जिस अव्वल नंबर आत्मा के द्वारा ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिव नई सृष्टि की स्थापना कराता है, राजयोग की बातें बताकर, और उस अव्वल नंबर आत्मा के द्वारा जैसे मुसलमानों में आज तक भी ये मान्यता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, तो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना तो अव्वल नंबर धर्म पिता ही करेगा, और धर्म पिता जिस धर्म की स्थापना करता है, स्थापना के निमित्त बनता है, उस धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती है तब तक धर्म पिता रहता है, परंतु और जो धर्म पिताएं हैं नंबर बार वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अल्पकाल का पार्ट बजाते हैं, और वो अव्वल नंबर का धर्म पिता तो अव्वल नंबर पार्टधारी है जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है, तो वो हीरो पार्टधारी उसको हीरो बनाता कौन है, है? वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से हीरो बनता है या कोई बनाता है? हाँ, अगर कहें बनाता है तो बात आती है औरों को क्यों नहीं बनाता, बनाने वाला पार्शलिटी करता है क्या? पार्शलिटी तो नहीं कर सकता, हाँ वो मत देता है, क्या मत माने अकल बुद्धि देता है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक वो ही आत्मा है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, सर्वोत्तम बुद्धिमान आत्मा, जैसा गीता में लिखा है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से मन प्रबल है, और मन से मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है, और मनुष्यों में भी कोई एक मनुष्य है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज जो बहुत प्रबल है, त्रिनेत्री कहा जाता है, कोई चित्र देखा है त्रिनेत्री का? है? कौन सा चित्र देखा? शंकर का चित्र देखा, भारतीय परंपरा के शास्त्रों में त्रिनेत्री के नाम से शंकर प्रसिद्ध है, और उसका जो तीसरा नेत्र है वो बुद्धि का नेत्र कहा जाता है, जिसके लिए कहा गीता में कि मन से भी प्रबल वो त्रिनेत्री बुद्धि है, और फिर बताया यो बुद्धि परसस्तुस, जो उस बुद्धिमान से भी परे से परे है वो है। तो साबित हो जाता है कि बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है, कोई नीचे वाला है या कोई ऊपर है, कोई है इसलिए है कि वो त्रिकालदर्शी। तीनों काल के सत्य का ज्ञाता है, इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज वन, वो एक ही है, परंतु जैसे हम आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, वो भी बिंदु है, फिर पहचान में कैसे आएगा? ये भी बिंदु, वो भी बिंदु, वो भी बिंदु, 500 700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं बिंदु, कैसे पहचाने? जब वो प्रवेश करे हम बच्चों में से किसी एक मुकर्रर रथ में, एक शरीर रूपी रथ में परमानेंट प्रवेश करे, तब पहचाना जाए। तो गीता में भी एक शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, तो वो प्रवेश करता है। और गीता के मुख पृष्ठ पर जो चित्र दिखाया है, कौन सा चित्र दिखाते हैं? मुख पृष्ठ पर कौन सा चित्र दिखाते हैं? रथ, अर्जुन का रथ दिखाते हैं ना। अर्जुन के रथ में भगवान सारथी के रूप में बैठे, अर्जुन रथी है। और गीता में कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन, क्या मनुष्यों के बीच अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य है जो गीता ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रास्प करने वाला है, वो बुद्धिमान कौन? अर्जुन है। तो वो अर्जुन वास्तव में कोई दूसरी आत्मा नहीं है, अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला, धन का उपार्जन करने वाला। और धन कौन सा श्रेष्ठ है? बड़े से बड़ा धन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ज्ञान धन। और ज्ञान कहा जाता है जानकारी को, कहीं की जानकारी, सत्य की जानकारी। तो वो सत्य की जानकारी देने वाला भगवान अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है। रथ माना शरीर, शास्त्रों में भी कहा है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हर हयान्याहु, शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो दिखाया गया गीता के मुख पृष्ठ पर कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश होकर के उस रथ को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? रथ को, आत्मा को नहीं, रथ को कंट्रोल करते या आत्मा को कंट्रोल करते? आत्मा को नहीं कंट्रोल करते, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ते। मेरी बात मानो या न मानो, जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब मानो, फोर्स नहीं करते। ऊंचते ऊंचे ना, तो वो ऊंचते ऊंचे कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। क्या? स्वतंत्र हो और स्वतंत्र है। आत्मा को कंट्रोल नहीं किया, अर्जुन की आत्मा को भी कंट्रोल नहीं करता, कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। जिनमें प्रवेश करता है मनुष्य तन में ही प्रवेश करता है, तो उसका नाम देता है ब्रह्मा। और ब्रह्मा नामधारी तो शास्त्रों में चार पांच गाए हुए हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर का कोई तो ब्रह्मा होगा ना। तो जिस अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश करता है वो है परम ब्रह्म। परम माने परे ते परे स्टेज में पार्ट बजाने वाली माँ, प्रबल ते प्रबल तम्मा, जिस माँ से जास्ती प्रबल पार्ट कोई आत्मा बजा ही नहीं सकती। इसलिए हमारे भारत में आदिकाल से ही माता को विशेष प्रेफरेंस दिया है, इसलिए कहा जाता है माता पिता। ये नहीं कहते पिता माता, माता पिता। और शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो भी कहते हैं त्वमेव माता च पिता। तो तू ही मेरी माता है, माता को आगे रखते। क्यों? क्योंकि वो जब आता है तो पहले पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिस आत्मा के तन में भी प्रवेश करे, करता तो पुरुष तन में ही है, परंतु जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्म। उसमें आकर के बीज डालता है, सीड। काहे का बीज? ज्ञान का बीज। इसलिए गीता में लिखा है अहम बीज प्रदप्पिता। क्या? मैं कौन? वो ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। साधारण पिता नहीं है, परम पिता। वो परम पिता, तो परम पिता को क्या चाहिए? परम माता, परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म, वो परम पिता, वो परम पुरुष। क्या? वो क्या है? परम पुरुष। और जिसमें प्रवेश करके अपना कार्य कराता है वो है पराप्रकटी। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। क्या? उसकी प्रकृष्ट रचना प्रकृति। तो जो ऋषि मुनि विद्वान हुए उन्होंने ये बात बताई, इस मनुष्य सृष्टि की प्रत्येक आत्मा को ये बताइए कि ये जो मनुष्य सृष्टि है उसमें दो ही मुख्य हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति है माता और पुरुष है पिता। तो वो पिता माता में प्रवेश करके नई सृष्टि रूपी परिवार की रचना करता है, या कहो कराता है। कैसे? ज्ञान का बीज डाल देता है। जैसे दुनिया में भी कोई पिता होते हैं सामान्य, तो क्या करते हैं, माता में बीज डालते हैं, वो बीज ऑटोमेटिक कार्य करता है। बीज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चा तैयार होता है हाथ पांव वाला, और जब परिपक्व पिंड तैयार हो जाता है शरीर का, तो बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। क्या पहले शरीर तैयार होता है, पांच तत्वों का जड़ पुतला तैयार होता है, या आत्मा पहले आती है? है, पांच तत्वों का पुतला पहले तैयार होता है, उस पुतले में आत्मा नहीं होती है, जड़त्वमयी पुतला होता है, होता है ना। तो जब वो आता है, प्रवेश करता है, तो माता में ज्ञान का बीज तो डाला, वो बीज भ्रूण बनता है, परिपक्व पुतला भी बन जाता है, लेकिन उसमें आत्मा चैतन्य नहीं होती। क्या क्या होती है? जड़त्वमयी। वो जड़त्वमयी पिंड जो है, फिर बाद में उसमें सोल प्रवेश होती है। प्रवेश होती है, जन्म नहीं लेती। क्या? प्रवेश होना अलग बात और जन्म होना अलग बात। बच्चा जब बाहर आता है पेट से, तो कहते हैं जन्म हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। तो जब प्रवेश किया, तब के लिए बताया उसने कि जब मैं प्रवेश करता हूं, तो जिस उस रथ में प्रवेश किया, माता के गर्भ में, उस गर्भ में जो पिंड है निर्जीव, वो हरकत करने लगा। माता को पता चलता है, दुनिया में और किसी को पता नहीं चलता। तो जब प्रवेश करता है, तब उस आत्मा को परिचय होता है। क्या? कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य पुतला हूं। वो प्रवेश हुआ हुआ जो क्षण है, उसी को बोला है पिछली अव्यक्त वाणियों में, अभी रिसेंट वाणियों में ही बोला, 5 दिसंबर को बाप और बच्चे का मेल हुआ पहली बार। वो वाणी सुनी नहीं? सुनी है? कोई नहीं, नहीं सुनी, फिर सुन लेना। अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी के मुख से ये बात क्लैरिफाई की गई कि 18 जनवरी 69 बाप दादा का स्मृति दिवस नहीं है, वो है देहधारी आत्माओं का मिलन का स्मृति दिवस, 18 जनवरी। देहधारी आत्मा अलग, और विदेही आत्मा और देहधारी आत्मा, दोनों का मेल अलग। तो विदेही आत्मा वो जब उस निर्जीव पिंड में प्रवेश करती है, पहली बार दो आत्माओं का जैसे मेल हुआ और वो मेल पक्का आत्मिक स्मृति दिवस है, माना बाप और बच्चे का स्मृति दिवस। बाप कौन, किसका बाप? आत्माओं का बाप। और बच्चा कौन है? आत्माओं के बाप के जो भी 500-700 करोड़ बच्चे हैं, मनुष्य है, उन बच्चों में बड़े से बड़ा बच्चा बाप का जो बच्चा पहली बार बच्चा बनता है वही बड़ा बच्चा होता है ना। तो मनुष्य सृष्टि रूपी बच्चों में जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, मनुष्य आत्मा है, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? है, होगा। तो जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे में शिव बाप ने पहली बार मेल का स्मृति दिवस बताया। कौन सी तारीख? 5 दिसंबर। अब सवाल ये होता है कौन से सन का 5 दिसंबर? अरे भाई सीधी सी बात है, ये संसार रूपी जंगल है, फॉरेस्ट। इस संसार रूपी फॉरेस्ट में आज भी यादगार के रूप में हमारी भारतीय गवर्नमेंट के जो नोट छपते हैं उनमें भी 3 शेर दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। अशोक की जो लाट है उसमें भी 3 शेर दिखाते हैं। और शिव को भी कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां। तो वो 3 शेर जो हैं, जिनकी यादगार हमारा तिरंगा झंडा भी है, जिसके लिए गाते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे कपड़े का झंडा थोड़े ही विश्व विजय करता है, कपड़े का अर्थ क्या है? ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये वस्त्र तो है लेकिन ये भी वस्त्र है। ये क्या है? ये भी वस्त्र है आत्मा का। तो 3 प्रकार के ये वस्त्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्होंने सृष्टि के आदि काल में सारे विश्व धर्मों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, उनकी यादगार है तिरंगा झंडा। 3 शेर, 3 मूर्तियां। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो जो साकार 3 मूर्तियां हैं, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी, वो 3 मूर्तियां विश्व विजय करने से पहले ही प्रत्यक्ष होंगी संसार में, या विश्व विजय करने के बाद संसार में प्रत्यक्षता हुई? अरे है? हाँ, जब विजय हो गई तो सारे संसार ने माना कि ये 3 मूर्तियां हैं। लेकिन ये 3 मूर्तियां किसकी हैं? शिव की। किसकी मूर्तियाँ? शिव की। लेकिन शिव को मूर्ति अपनी है, शिव को मूर्ति माना साकार, उसको अपनी साकार मूर्ति है, है? तो शिव की इतनी मूर्तियां कैसे कही जाएंगी? वो तब कही जाती हैं कि जब शिव इस सृष्टि पर आता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, और वो मुकर्रर रथ आत्मिक स्टेज का अनुभव करता है। मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, और वो पुरुषार्थ करते करते, प्रैक्टिस करते करते निरंतर स्टेज पर पहुंचता है। कैसी निरंतर स्टेज? कि देह की याद ही नहीं रहे, इंद्रियों की याद ही नहीं रहे, इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो सुख की स्मृति भी नहीं रहे। ऐसी स्टेज जब प्राप्त कर लेता है पुरुषार्थ की, तो वो शिव समान बन जाता है। वो ही है त्रिमूर्ति शिव, उसकी अपनी मूर्ति भी है। वो अपनी मूर्ति ही देव देव महादेव कही जाती है। ब्रह्मा देव, विष्णु देव और महान देव। महान ते महान पार्ट बजाने वाली हीरो पार्ट धारी आत्मा। तो वो महादेव जो है वो तो महादेव कहा जाता है। क्या भगवान तो नहीं है, लेकिन जब शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है तो संसार सारा उसे भगवान समझ करके उसकी स्मृति में टिकने का प्रयास करता, पुरुषार्थ करता है, और उसी समय की यादगार है जो गीता का महामंत्र है। क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा कहती है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा कहता है, मेरे मन में समा जा। मना वो नहीं कहता क्या कि मेरे मन में समा जा? क्यों नहीं कहता? उसको मन ही नहीं है, वो तो असोचता है। जिसको मन होगा वो सोचेगा, विचार करेगा, अपने पार्ट के बारे में चिंतन करेगा। उसको तो मन ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको मन है। तो प्रवेश जिसमें किया उस समय वो अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है। उस समय तो वो नहीं कह सकता मन मना भव। जो मन मना भव कहा गया है वो उसके संपूर्ण स्टेज की यादगार है। वो संपूर्ण स्टेज जब बनती है तो उस टाइम को कहा जाता है महाशिवरात्रि। क्या कहा जाता? महाशिवरात्रि, महान ते महान शिवरात्रि। ऐसी रात्रि, ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिस अज्ञान की अंधकार की रात्रि में सारी दुनिया डूब जाती है। जैसे आज का समय है, बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी हुई है। डूबी है या नहीं डूबी? कैसे? अरे इतने इतने हवाई जहाज बन रहे हैं, महल माड़ियां अटारियां बन रही हैं, कितनी खुशनुमा जिंदगी विदेशों में देखने में आ रही है, अज्ञान अंधकार में है।
भगवान को नहीं जानते हैं,
इसको जानने की जरूरत क्या है? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहा? खुद ही खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आ पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो कौन बड़ा हुआ? खुदा बड़ा हुआ कि बंदा बड़ा हुआ? हा? क्यों? वो खुद आकर के पूछ रहा है, वो खुद आकर के पूछ रहा है, बंदे को उसके पास जाने की जरूरत नहीं गई। तो बड़ा कौन हुआ? खुदा बड़ा हुआ है,
बंदा बड़ा तो दिया उसे कम से कम।
देखो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, उल्टा पलटा जवाब न दो। सीढ़ी के चित्र में बैगर दिखाया गया, दिखाया गया ना, और विदेशी उसे भीख दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। तो वो जो बैगर है उसे विदेशियों के पास जाकर के भीख में मिलती है, या विदेशी खुद उसके पास आते हैं भीख देने के लिए?
खुद आते हैं,
खुद आते हैं,
खुद आते हैं, खुद आके देते
हैं। विदेशी खुद आके देते हैं? अरे वो तो चित्र में दिखाया गया है, असलियत क्या है? बैगर को दरवाजे दरवाजे जाना पड़ता है बैगिंग करने के लिए, या दान देने वाला स्वयं आकर के उसको दे देता है? हैं? जाना ही पड़ता है। भीख लेने की दरकार किसको है? देने वाले को या लेने वाले को? लेने वाले को दरकार है। तो बंदा ये कहता है, जो इस सृष्टि का बंदा है वो कहता है कि खुद ही को इतना बुलंद करो कि खुदा खुद आकर के पूछे क्या चाहते हो भाई, हमें बताओ। तो कौन बड़ा हुआ?
सही बड़ा।
बंदा ही बड़ा हो गया जो खुदा को भी खुद आना पड़ा। खुदा का मतलब क्या है? खुदा का मतलब यह है जो खुद ही आए, क्या बुलाने से नहीं आए। कैसे आए? खुद ही आए। तो दरकार उसे पड़ी या दरकार उसे पड़ी? है? दरकार माने आवश्यकता, नेसेसिटी किसकी है, नीचे वाले की या ऊपर वाले की? है? नीचे वाले की नेसेसिटी है, लेकिन वो बुलाता नहीं, वो खुद आता है। इसीलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, वो कहता है क्या ब्रह्म वाक्य? मैं भारत पर आशिक होकर आता हूँ। क्या वो आशिक है और वो माशूक है? आशिक माशूक के पीछे भागता है, या माशूका आशिक के पीछे भक्ति है। तो किसका बड़प्पन हुआ, कौन बड़ा हुआ, माशूक बड़ी हुई या आशिक बड़ा हुआ? माशूक बड़ी हो गई और आशिक, आशिक बेचारा छोटा हो गया। तो वो आशिक बनकर आता है भारत में, दूसरे देश में नहीं आता है। और खुद ही आता है। तो देखो भारत खुद ही माने अहंकार, अहंकार में आगे हुआ या पीछे हुआ
है?
अहंकार उसका अहंकार सबसे बड़ा हो गया। अहंकार माना खुद ही, क्या अहंकार माने खुदी को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से आ पूछे, वो आकर के देता है। किसको देता है? परम ब्रह्म को। क्या दुनिया में भी जितने भी पुरुष होते हैं, जब पिता बनने लायक बनते हैं पिता की शक्ति उनमें आकर इकट्ठी होती है, जिसे सत्व कहते हैं। पुरुष जब नौजवान होता है ना, तो उसमें एक ऐसी शक्ति इकट्ठी होती है कि वो इस शक्ति को अपने पास रोक नहीं सकता। यहां बहुत होंगे जो पिता बन चुके होंगे, क्या ऐसे भी होंगे तो एक जो पिता नहीं बने हैं, नौजवान हैं, पिता बनने के योग्य हैं। तो जो योग्य हैं या जो पिता बन चुके हैं, उनके अंदर ये अनुभव होगा कि जब पिता बनने की क्वालिटी आ जाती है, ताकत आ जाती है शरीर में, तो वो अपनी शरीर की शक्ति को रोक नहीं पाते। नई सृष्टि रचने के लिए, परिवार बनाने के लिए वो कोई माता का या कन्या का आधार ढूंढते हैं। ढूंढते हैं या नहीं है? ढूंढते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ऐसा एक भी पुरुष इस दुनिया में नहीं होगा जो नौजवान होने के बाद अपनी शक्ति को अपने अंदर जीवन भर सिक्योर करके रख सके। कोई न कोई तरीका ढूंढता है जिससे उसकी शक्ति छीन हो। तो दरकार है उसे, पुरुष को, के नया परिवार रचने के लिए उस बाप को अपना कुटुंब तैयार करने के लिए एक कन्या या माता आधार के रूप में चाहिए, जिसमें वो अपने सारी शक्ति जितनी भी है, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जिसे सत्व कहा जाता है, धारण कराता है माता को, अपनी सारी पावर देता है उसे। और वो माता परिवार में जितने भी भांति तैयार होते हैं भाई बहने, उन सब को कंट्रोल करती है, उन सब की परवरिश करती है, सब की पालना करती है। उस परिवार में वो बच्चे माता को ही सर्वोपरि मानते हैं, बच्चे पिता को नहीं पहचानते। क्या? जब तक माता स्वयं बाप का परिचय न दे कि मेरे से भी बड़ी पावर वो है जिसने तेरे को जन्म दिया, नहीं तो बच्चा समझता है माँ ने ही मेरे को जन्म दिया, माँ ही मेरी पालन करता है, माँ से ऊंचा किसी को मानता ही नहीं। जैसे आप सब ब्राह्मण जानते होंगे, जो बच्चे हैं ब्राह्मण परिवार में, बच्चा बुद्धि जो अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं कि हम अम्मा कुमार हैं, अम्मा कुमारी हैं, उनसे पूछो बाप का तो नाम बताओ तो बताते हैं, नहीं बताते क्योंकि जानते ही नहीं। माँ ने उनको बताया ही नहीं, और माँ बताए कहाँ से? उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जो माँ ब्रह्मा है वो स्वयं ही बाप को असली नहीं जानती कि असलियत क्या है, पहचानती नहीं है, या तो पहचानती है लेकिन कोई ऐसा दुष्कर्म हो जाता है जिस दुष्कर्म से वो बच्चे पैदा होते हैं, तो असली नाम बाप का बताती नहीं है। इसलिए माताएं भी नंबरवार बनती हैं, इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पहली जूती गई, अब दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं, चार पांच शादियां भी कर लेते हैं। तो कौन सी माता से पैदा हुए बच्चों को समाज में विशेष मान मिलता है, पहली माता से या बाद वाली माताओं से पैदा हुए बच्चों को ज्यादा मान मिलता है? पहली माता को मान। क्यों? क्योंकि पहली माता से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो माता और पिता दोनों के लंबे समय की क्या प्योरिटी की पावर इकट्ठी हुई, उससे पैदा हुए। बाद वाली माताओं से जो पैदा हुए वो उतनी प्योरिटी नहीं। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच है, मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार है, जिसमें जो अव्वल नंबर माता है परम ब्रह्म, उससे सूर्यवंशी बच्चे पैदा होते हैं और बाद वाली माताओं से नंबरवार बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए चार ही वंश मुख्य हैं। क्या? देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। सृष्टि के आदि से ही ये चार का बीजारोपण हुआ ब्रह्मा द्वारा। तो जो बड़ा बच्चा ज्ञान के आधार पर ज्ञानेश्वर कहा गया और योग के आधार पर योगीश्वर कहा गया। वो ब्रह्मा का बड़ा बच्चा सनत कुमार अवलंबर धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और भारत की परंपरा में योगीश्वर और ज्ञानेश्वर की जहां तक बात आती है तो तीन आत्माएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, योगीराज कृष्ण भगवान, गीता ज्ञानदाता के रूप में, और आपने एक चित्र देखा होगा देवताओं के चित्र के बीच में, ऐसा कौन से देवता का चित्र है जो बहुत ध्यान मग्न दिखाया जाता है, योगी की स्टेज में दिखाया जाता है, शंकर। तो वो शंकर को भी योगीश्वर मानते हैं। त्रिनेत्री अर्थात ज्ञान के नेत्र वाला त्रिनेत्री ज्ञानेश्वर मानते हैं, ज्ञानियों का ईश्वर, और ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार उसको भी ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहते हैं। तो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर के रूप में तीन तीन होंगे ईश्वर या एक ईश्वर होगा, एक ही होना चाहिए ना। तो इसे साबित होता है कि ये तीन नाम जो दिए हैं वो एक ही आत्मा के नाम हैं, एक ही आत्मा ने ये कार्य किए हैं योगियों का ईश्वर बनने का और ज्ञानियों का ईश्वर बनने का। वो कौन सी आत्मा, जो परम ब्रह्म का बड़ा बच्चा है, क्या परम ब्रह्म का बड़ा बच्चा, वो आता है परम पुरुष जिस माता को ढूंढता है वो पुरुष तन मिलता है, उस पुरुष तन को नाम देता है काम निकालने के लिए ब्रह्मा, क्या ब्रह्म वाक्य मुरली का है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहली बार जिसमें प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा दिया, कोई कारण होगा, शास्त्रों में नाम किस लिए दिए गए हैं, नाम किस आधार पर दिए गए हैं, काम के आधार पर। तो काम निकालना है उसे, क्या काम निकालना है, नई सृष्टि रचने का काम निकालना, नया परिवार बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम, क्या सारी वसुधा सारी प्रतिभागी के मनुष्य मात्र चाहे किसी भी धर्म के हों, क्या सभी मनुष्य मात्र एक कुटुंब के बन जाएं। इसलिए माता का नाम दिया क्या परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी माता, सारी मनुष्य सृष्टि की माता, जिसको कहा जाता है शास्त्रों में प्रकृति, वो पुरुष परम पुरुष और वो परा प्रकृति, वो बुद्धिमानों की बुद्धि, और जिसमें प्रवेश किया वो तन को देख करके प्रवेश किया या आत्मा को देख करके प्रवेश किया, दुनिया में जो बाप होते हैं या जो नौजवान होते हैं वो तन की सुंदरता और मन की सुंदरता दोनों ही देखते हैं, یا صرف ایک ہی چیز دیکھتے ہیں؟ کیا ہے تن کی سندرتا وشیش دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس جنم میں جو تن کی سندرتا ملتی ہے وہ پورو جنم سے کنیکٹڈ ہے. پورو جنم میں جس آتما نے تن کی اندریوں کا سدوپیوگ کیا ہے تو سدوپیوگ کے ریزلٹ میں اس کو اگلا جنم سندر شریر ملتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں تو ہسٹری میں راجاؤں کو دیکھ لو. راجاؤں نے اپنی پہلی جو بھی رانی بنائی ہوگی وہ کیا دیکھ کر کے رانی بنائی؟ پہلے سندرتا دیکھی نا ہے. اور یہی بات جو منیشی ہیں آج کی دنیا کے انہوں نے بھی کہی ہے, منشی کی باہری آکرتی من کی ایک پرتیکرتی ہے. باہری آکرتی کو دیکھ کر کے منشی کو من کو آتما کو پہچانا جا سکتا ہے. تو یہ پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے شروع کی ہے؟ وہ جب آتا ہے تو وہ بھی ایسی ہی ماتا کو چنتا ہے. کیسی ماتا کو ہے؟ ہاں تن ایسا سندرتا سے بھرپور ہو جو شیولنگ کی طرح سنسار میں پوجا جائے. اور سندرتا کسے کہا جاتا ہے؟ سندرتا کہا جاتا ہے حد کی ایک اور ایک بے حد کی سندرتا. کیا؟ ہاں, حد کی جو سندرتا ہے وہ چہرے اور چمڑے کی جو سندرتا ہے, اور جو بے حد کی سندرتا ہے وہ ہے روحانیت. کیا؟ روحانیت. کوئی بچے یا بچیاں بچپن سے ہی کالے دکھائی دیتے ہیں, اور جب وہ بچیاں نوجوان ہو جاتی ہیں تو روحانیت دیکھنے میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا. ہاں تو بولا مسلمانوں نے اس بات کو پہچانا ہے. انہوں نے بولا ہے آدم کو خدا مت کہو. جو منشی سرشتی کا پہلا آدمی ہے آدم, اس کو خدا مت کہو, لیکن خدا کے نور سے وہ جدا نہیں ہے. آدم کو خدا مت کہو, آدم خدا نہیں, لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں. مانے جو منشی سرشتی کا پہلا آدمی ہوا وہ خدا نہیں ہے. کیا؟ خود نہیں آتا. اس منشی سرشتی روپی رنگ منچ پر منشیوں کو گیان دینے کے لیے خدا نہیں آتا, لیکن وہ ہے اصلی جو خود ہی آتا ہے, بلانے سے نہیں آتا. وہ خدا اصلی خدا ہے. اسے سوریہ کہہ دو. کیا؟ جیسے سوریہ سدا روشن ہے یا کبھی روشن ہے کبھی روشن نہیں، سدا روشن ہے. تو وہ سوریہ جو ہے حد کا سوریہ، وہ تو آسمان کا سوریہ ہے. جیسے آسمان کے ستارے ہیں، آسمان کا چندرما ہے، آسمان کے گرہ اپگرہ ہیں، وہ جڑ ہیں. اداہرن دینے کے لیے، لیکن اس دھرتی کے ستارے تم بچے ہو، آتماروپی چیتنیہ ستارے. اس دھرتی پر پاٹ بجانے والے تم آتماؤں میں سے کوئی چندرما ہے، جو شاستر میں گایا ہوا ہے کرشن چندر. سولہ کلا سمپورن گایا ہوا ہے. کہتے ہیں ستیگ میں کرشن سولہ کلا سمپورن. کیرتن کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں، ہے کرشن نارائن واسودیو. مانا جو نارائن ہے وہی بچپن میں کرشن ہے، سولہ کلا سمپورن. وہی آتما اس منشیہ سرشٹی روپی رنگ منچ پر جنم جنمانتر میں نیچے اترتے اترتے سکھ اندریوں کا بھوکتے بھوکتے کلاہین بن جاتی ہے. کیونکہ دنیا کی ہر چیز ستو پردان، رجو پردان اور پھر تمو پردان بنتی ہے. تو وہ کرشن منشیہ سرشٹی کا پہلا پتا ہے. کیا؟ ہاں، جب پہلا پتا ہی ستو پردھان سے تمو پردھان بن جاتا ہے تو دوسرے پتے نہیں بنیں گے. دوسرے پتے بھی ایسے ہی ہیں، 500-700 کروڑ. تو منشیوں کی بدھی جو ہے اس سرشٹی روپی رنگ منچ پر جو چار سین ہے، ستیگ تریتا دواپر کلیوگ، ان چار سینوں کے آدھی تک پہنچتی ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا کسی کو کچھ بھی پتا نہیں. کیوں پتا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک مہامرتیو کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سچ روپی رنگ منچ پر کہ جس ایکسیڈنٹ کے بعد ہر منشیہ آتما سب کچھ بھول گئی. تو اسی لیے کوئی بھی منشی ماتر کو، کوئی بھی دیو آتما کو، کوئی بھی رشی منی کو، کوئی بھی منشی کو، کوئی بھی راکشس سمپردائے میں سے کسی کو یہ اسمرتی ہی نہیں ہے کہ ستیوگ سے پہلے کیا تھا. وہ ستیوگ تک کے جو ہیں وہ چتر ابھی بھی برقرار ہیں. کرشن کے چتر، لکشمی نارائن کے چتر، رام سیتا کے چتر، ان چتروں کے آدھار پر انہوں نے شاستر بنا لیے. پہاڑوں کی گفاؤں میں چترکاری کی، لیکن اصلیت کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. کہ اگر پہلا پتا ہے منشی سرشٹی کا جو شاستروں میں دکھاتے بھی ہیں، ساگر ہے، سنسار ساگر، اور اس میں پیپل کے پتے پر کرشن دکھاتے ہیں. کیا کس سرشٹی روپی رنگ منچ پر پہلے پہلے کس کو دکھاتے ہیں؟ پیپل کے پتے پر کرشن کو دکھاتے ہیں. مانا کبھیوں نے اپنی بھاونا کے آدھار پر اونچی اڑان اڑ کر کے اتنا تک جانا کہ یہ سنسار وشے ساگر ہے، اس وشے ساگر میں جہاں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، جھنجھاوات آتے ہیں، ان جھنجھاواتوں میں جو ساگر ہے اونچی اونچی لہریں اچھالتا ہے، ان اونچی اونچی لہروں میں پیپل کے پتے کی نویا پڑی ہے، نویا بڑی بھاری ہے یا ہلکی پھلکی ہے؟ ہلکی پھلکی ہے، اور اس نویا میں گرو محل میں کرشن بچہ پڑے آرام سے پڑا ہوا ہے، انگوٹھا دوسرا ہے، ارے یہ اتیشیوکت النکار ہے نا، کبھیوں کا النکارک بھاشا ہے نا، اس النکارک بھاشا کو آج کے منشیوں نے نہیں سمجھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سمجھے کبھی یا سمجھے روی، روی مانے گیان سوری، جو کبھیوں کی بھاؤ بھنگ میں ہے اس کی اونچائی کو، یا تو جن کبھیوں نے کبیتا رچی ہے وہ گہرائی تک بتا سکتے ہیں اس کا ارتھ، اگر وہ نہیں ہے موجود آج دنیا میں تو پرورتی کوئی بھی ساہتیکار ان کا صحیح ارتھ نہیں بتا سکتے، جب وہ آتا ہے کون جان سوریہ تو وہ آ کر اصلی ارتھ بتاتا ہے کہ ستیوگ سے پہلے سنگم یوگ ہوا تھا، جس سنگم یوگ میں کلیوگ کا انت اور ستیوگ کا آدی دونوں کا سنگم ہوا تھا، اس سنگم میں وہ ڈائریکٹر اس سرشتی پر آتا ہے، جو ڈائریکٹر اس سرشتی روپی رنگ منچ پر آ کر سدا پردے کے پیچھے پارٹ بجاتا ہے، کیا پردے کے باہر کسی کو نظر نہیں آتا، باقی جتنے بھی ایکٹرز ہیں اس سرشتی روپی رنگ منچ کے وہ رنگ منچ پر پارٹ بجاتے ہیں، اور ڈائریکٹر پردے کے پیچھے سے ان کو پرامپٹنگ دیتا ہے، اس پرامپٹنگ کو نمبر وار ایکٹرز پکڑتے ہیں، جو اول نمبر پکڑنے والا بہت اچھا ایکٹر ہوتا ہے وہ ہیرو کہا جاتا ہے، تو جو ہیرو پارٹ دھاری ہے اس ہیرو پارٹ دھاری کو وہ گیان سوری جب اس سرشتی پر آتا ہے تو گیتا میں بولا ہے بھگوان نے کہ میں جب آتا ہوں تو سوریہ کا ٹائٹل دیتا ہوں، اپنا ٹائٹل بچے کو دیتا ہوں، آج دنیا میں ایسا ہی تو چلتا ہے، باپ کا ٹائٹل بچوں کو جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ باپ دیکشت، باپ پانڈے، باپ بھاردواج، تو بچے کو وہی ٹائٹل ملتا ہے باپ کا، تو یہی بات ہے، وہ سوریہ ہے تو وہ سوریہ سرشتی روپی رنگ منچ پر آتا ہے، جس میں مقرر روپ سے پرویش کرتا ہے اس کے لیے گیتا میں بولا میں سوریہ کو یہ ساری گیان کی روشنی دیتا ہوں، اس لیے جیسے میں سوریہ ہوں میرے سمان میرے بچہ بھی گیان سوریہ ہے، اس سچ روپی رنگ منچ پر षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो ज्ञान सूर्य है और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा पहले परे रहने वाला वो ज्ञान सूर्य वो सदा शिव है। क्या शिव माने कल्याणकारी, कभी भी अकल्याण का पार्ट नहीं बजाता। जब जब इस सृष्टि का महामृत्यु का समय होता है तब तब वो आकर मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है, लेकिन कल्याण का ही पार्ट बजाता है, अकल्याण का कोई पार्ट नहीं बजाता। कोई भी इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाएगा मुकर्रर रथ के द्वारा, क्या चाहे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए और चाहे कर्म इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए। कर्म इंद्रिय में भी जो सबसे प्रबल कर्म इंद्रिय कौन सी है, काम इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए, लेकिन अकल्याणकारी नहीं हो सकता। क्या कैसा पार्ट होगा, कल्याण ही कल्याण समाया हुआ। भले थोड़े समय के लिए कोई अज्ञानी समझे अरे ये तो बड़ा अज्ञान का काम हो गया, नहीं, जब अंतिम टाइम आएगा रिजल्ट का, सारी मनुष्य सृष्टि पर जब रिजल्ट हर मनुष्य आत्मा के पार्ट का खुलेगा तो हर आत्मा पहचानेगी कि एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। भले हर सीन में पार्ट नहीं बजाती, सिर्फ संगम में ही पार्ट बजाती है, फिर भी वो कल्याणकारी पार्ट ही बजाती है, कभी अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजा सकती। तो कल्याण का काम करने के कारण उसका नाम क्या पड़ा, शिव। मेरे काम के आधार पर नाम पड़ता है और मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है, मेरे को शरीर है ही नहीं, इसलिए ज्योति बिंदु आत्मा जो है वो पार्ट ऐसा बजाती है कि कल्याण ही कल्याण, इसलिए अकल्याण का कोई न काम करती ही नहीं। तो शास्त्रों में मेरे आत्मा के काम के आधार पर मेरा नाम क्या रख दिया, शिव रख दिया और टाइटल भी दिया। सिर्फ शिव नहीं, सदा शिव माने जितने समय तक मैं पार्ट बजाता हूँ षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा शिव माना सदा कल्याणकारी पार्ट बजाता हूँ। कोई आत्मा कह नहीं सकती कि शिव बाप ने हमको दुख दिया, क्या लास्ट में जब सबका रिजल्ट निकलेगा तो हर आत्मा ये बोलेगी कि मुझे आत्मा से उसको जितना सुख मिला उतना और किसी से मिला ही, लेकिन क्या वो सबको सदा सुख देने वाला है, वो सदा सुख दाता है, वो सदा सुख दाता है, वो नहीं है सदा सुखदाता और सबका सुखदाता। एक तो सदा सुखदाता, माने जब तक इस सच्चरूपी रंगमंच पर पार्ट बजाए सदा सुख का ही देने का पार्ट बजाए, किसी प्रकार का दुख देने का पार्ट बजाए ही नहीं। और दूसरा सबका सुखदाता, सबका माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको सुख देने वाला, सबको सुख का अनुभव कराने वाला वो है, 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 है या नहीं है? माता जी कहती है अगर है तो जब इस सृष्टि का महामृत्यु का टाइम आता है 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी, छोड़ेगी ना, तो वो आत्मा ये कहेगी कि मेरे को उसने सुख दिया, तब तक वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है, है? जैसे इस्लाम धर्म की लास्ट वाली आत्मा या बौद्ध धर्म की लास्ट वाली आत्मा या क्रिश्चियन धर्म की लास्ट वाली आत्मा अपने धर्म पिता से सुख भोगने का अनुभव करेगी, अपने धर्म पिता से ज्ञान लेगी या उससे ज्ञान लेगी? है? अपने धर्म पिता से ज्ञान लेगी, और जिससे एवरलास्टिंग ज्ञान लेगी उसी को श्रेष्ठ मानेगी, किसी को पहचानेगी नहीं। तो इसे साबित हो गया कि वो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप है, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माता के द्वारा जिस वंश की स्थापना करता है, उस वंश में पैदा होने वाले जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे सूर्यवंशी हैं, और वो सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान सूर्य की ऐसी अखूट रोशनी को प्राप्त करते हैं जो जन्म जन्मांतर चलती है। ऐसी अखूट रोशनी ज्ञान की रोशनी, ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। आत्माओं के बाप से ज्ञान आता है, एक से ज्ञान आता है और बाकी सब से अज्ञान आता है। एक ज्ञानी 100% और बाकी सब अज्ञानी, आज नहीं तो कल अज्ञानी बन जाते। भले देवात्माएं सतयुग के आदि में पारस बुद्धि कही जाए, परंतु वो भी कलयुग के अंत में आकर के चाहे महादेव ही क्यों ना आत्मा हो, क्या देव आत्माओं में सबसे ऊंची आत्मा महादेव ही क्यों ना हो, वो भी अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनता है या पारस बुद्धि रहता है? पत्थर बुद्धि बनता है। नर मना मनुष्य पुरुष, नर सब नरक बनाने वाले, क्या और नरक को ज्ञान दे करके वो एक ही है जो नारायण बनाता है, वो एक आत्मा है जो ज्ञान दे करके क्या बनाता, नारायण बनाता, नरक को नारायण बनाता। लेकिन वो अब्बल नंबर धर्म पिता है ना, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी यही सिखाता है। क्या? कि तुम्हारा असली धर्म क्या है, है? स्वधर्म। क्या धर्म है? स्वधर्म। जो गायनाद तक चलता आया है, गीता में भी लिखा है, भगवान ने ही बताया, स्वधर्मे निधनम सेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में शरीर से मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ, पर धर्म माने पराया धर्म दुखदाई होता है। माना जो आत्मा का धर्म है स्वधर्म वो ही श्रेष्ठ है, और आत्मा का बाप, स्व का बाप, आत्मा का बाप सुप्रीम सोल, परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो आकर के इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो ज्ञान लेता है वो ज्ञान ही सर्वोपरि शक्ति है। सर्वोपरि पवित्र चीज है क्या? है ज्ञान। इसलिए गीता में लिखा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्र जितना भी होगा, पवित्र ज्ञान को धारण करने वाला उतनी ही पावरफुल आत्मा होगी। ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाला, क्योंकि एक ईश्वर है जो ज्ञान देता है, ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। क्यों? क्योंकि वो ही त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता। लेकिन तीनों काल का ज्ञाता किस आधार पर? कोई आधार होगा। कौन से आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है? अरे हैं? ठीक है, वो खुद नहीं आता, लेकिन तीनों काल किसके आधार पर गाए हुए हैं? कोई है इस दुनिया में जो तीनों काल को क्रॉस करने वाली आत्मा हो, जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी कहा जाए? भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल को क्रॉस कर जाए, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाए पार्ट बजाते बजाते? कोई है या नहीं है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज, बीज बाप को कहा जाता है। बीज का कभी नाश नहीं होता। जैसे ये आत्मा बीज है, ये शरीर वृक्ष है, ये वृक्ष नाशवान है। इसका तना हो, इसकी टहनियां हो, इसकी जड़ें हो, इसके फूल हो, इसके पत्ते हो, सब नाशवान। लेकिन इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो कभी नाश नहीं होता है। ऐसे ही वो चैतन्य आत्मा है एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, जिस वृक्ष का वर्णन गीता में भी कहा गया, किया गया है, ऊर्ध्वं मूलं मदशाखा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की ऋषि मुनियों रूपी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। क्या? ऊर्ध रहता है। क्या वो ऋषि मुनियों की मन बुद्धि नीचे जाने वाली नहीं है? ऊर्धम मूलम अदश शाखा, उसकी शाखाएं जो हैं नीचे की ओर जा रही है। हम जानते हैं कि वृक्ष की एक शाखा है दाई ओर, दाई ओर की शाखाएं दाया हाथ, शुभ सूचक या अशुभ सूचक है? राइट हैंड अच्छा या बुरा?
अच्छा,
अच्छा। राइट हैंड से दान धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जो इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं दाई ओर की, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, जो भी दाई ओर की शाखाएं हैं, वो सब पवित्रता को अर्थात ब्रह्मचर्य को पालन करने वाली हैं। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का ज्ञान नहीं देती। पवित्रता ही सबसे श्रेष्ठ चीज है ना। ऐसे ही जो बाईं ओर की डालियां हैं लेफ्ट साइड की, बाम मार्गी कहा जाता है। बाएं हाथ से क्या करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, गंदा काम करते हैं। तो वो डालियां हैं इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म और नास्तिक जैसे, जिन्हें धर्म कहे ही नहीं। ये सारे ही ब्रह्मचर्य को खंडन करने वाले, पवित्रता को नष्ट करने वाले धर्म। और एक ऐसा भी तना है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही जाता है, न इधर झुकता न उधर झुकता। तो वो कौन सा वंश? नहीं, सूर्य वंश है। देवी देवताओं में तो चंद्रवंशी भी आते हैं। वो चंद्रवंशी ही दाई ओर कोई बाई ओर कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? लेकिन जो सूर्यवंशी हैं, कभी जीवन रहते रहते जब तक जहां जन्म लेंगे उस शरीर से वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। अगले जन्म में भले कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जहां जन्म लेंगे उस जन्म लिए हुए शरीर से कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो है तना, सीधा जाने वाला। उनके लिए बोला है गीता में और उन्हीं के लिए लागू होता है, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है। दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे धर्म की बातें भी नहीं सुनना चाहिए। और यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली भगवान ने, क्या याद है? एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुनेंगे तो एक धर्म में रहेंगे जन्म जन्मांतर, क्योंकि एक ही ज्ञान सूर्य है। अगर दूसरों तीसरों चौथे से सुनेंगे तो उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये संगम युग है, रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग हो रही है। क्या चारों युगों की रिहर्सल हो रही है। इस रिहर्सल के टाइम पर उसका गीता में कहना है चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से। क्या मैं जब आता हूं रिहर्सल कराता हूं पार्टधारी आत्माओं के द्वारा तो चार वर्णों की रचना करता हूं, हरेक के पार्ट के आधार पर हरेक ब्राह्मण जैसा जैसा पार्ट बजाता है, जैसे जैसे गुण और अवगुण प्रत्यक्ष करता है, ज्ञान लेने के बाद ब्राह्मण बनने के बाद उसी वर्ण में उसकी रचना हो जाती है। संगम युग में वो पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर हमारे पार्ट के अनुसार रिजल्ट दे देता है। जिन्होंने पवित्र रहने वाले ब्राह्मण का पार्ट बजाया ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि से, क्या पार्ट बजाने वाला कौन? जड़ शरीर या आत्मा? है आत्मा। तो आत्म की स्थिति में रह करके जो आत्मा अपन को समझते हुए पवित्र रहता है मन बुद्धि से, भले कर्मेंद्रियों से अपवित्र होता है, देखने में आता है कर्मेंद्रियों से अपवित्र है, फिर भी मन बुद्धि उन कर्मेंद्रियों में लिप्त नहीं होती। जिसका मिसाल दिया जाता है कमल फूल से, कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में डुबो दो फिर निकालो, एक बूंद भी कीचड़ की उसमें नहीं ठहरेगी। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण बुद्धियोग अपना एकाग्र करने की प्रैक्टिस करते हैं जीवन में सच्चाई से, भले प्रैक्टिस करने के टाइम बीसियों बार, जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला 20 बार गिरता है 20 बार चढ़ जाता उठ जाता है, हिम्मत हार जाता है, है? अरे साइकिल सीखने वाला गिरता है बार बार तो हिम्मत हार जाता है, है? नहीं, इसलिए गायन है हिम्मत हारे हार है हिम्मत जीते जी। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे जितना हिम्मत करते हो भले माया उतना प्रबल रूप से तुम्हारा मुकाबला करती है, तो भी तुम अगर हिम्मत करते हो एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो तो बाप 20 कदम नहीं 100 कदम आगे तुमको बढ़ करके सहयोग देता है। तो उसको हारा हुआ कहेंगे? कहेंगे है? नहीं कहेंगे। मन के जीते जीत मन के हारे हा। तो मन की बात है, इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों को जीतने के लिए मन को कंट्रोल करना है। मन प्रबल इंद्रिय है, इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जो कर्म करती हैं अगर मन उन इंद्रियों का साथ नहीं देगा तो इंद्रियां वो रस अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए मूल बात है मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। नहीं तो जो ये ग्यारहवीं इंद्रिय मन है वो इतना प्रबल है, इतना चंचल है कि वो नीचे गिरा ही देता है। तो बताया अर्जुन को जो अब्बल लंबर पुरुषार्थी है उसे तरीका बताया कि मन को कैसे कंट्रोल करें। अभ्यासेन तो कौनते है वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, बार बार अभ्यास कर, बार बार प्रैक्टिस कर। क्या मन जो है वो जीवन भर जिस इंद्रिय से सुख लिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस इंद्रिय से जीवन भर सुख लिया है वो इंद्रिय याद के समय बार बार याद आएगी। इंद्रिय का सुख अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन क्या करना है, जैसे ही इंद्रिय अपने विषय की तरफ, विकार की तरफ खींचे, वैसे ही फुल स्टॉप लगा करके फिर उसे याद कर, अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर। सन्यासियों की तरह प्रैक्टिस नहीं। क्या सन्यासी क्या करते हैं, हैं? सन्यासी क्या करते हैं, हैं? काम इंद्रिय को सुख जहां से मिलता है उस घरबार को, गृहिणी को, बाल बच्चों को छोड़ के चले जाते। उनका कहना है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर संसार के सामने डिंग मारते हैं। क्या अलर्ट होके बैठना चाहिए, डिंग मारते हैं। क्या डिंग मांगते हैं, अरे हमने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये नहीं कहते, जैसे जेल में रहने वाला कैदी 10-20 साल जेल में रहे और बाहर आए, हमने 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। अरे ये तुम्हारी मजबूरी हुई या असलियत है? असलियत तो तब है जब घर गृहस्थ में अर्जुन की तरह, पांडवों की तरह घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रह करके दिखाओ, पवित्र रहने का पुरुषार्थ करो, पवित्र रहने की प्रैक्टिस करो, तब असलियत है तुम्हारे पुरुषार्थ की। नहीं तो कायर हो कायर, असली पुरुषार्थी नहीं हो। तो भगवान गृहस्थियों को आकर के राजयोग सिखाता है या सन्यासियों को सिखाता है, हैं? गृहस्थियों को सिखाता है। ये जितने भी धर्म पिता हैं इस धरा पर आए 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह जो भी आए, वो सब सन्यासी हैं। क्या क्या हैं? सन्यासी हैं। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। उन्होंने घरबार को त्यागा है। क्या नहीं त्यागा? जो मन का सुख है वो नहीं त्यागा। सभी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स एक शादी करने वाले हुए या अनेक शादियां करने वाले हुए, धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। एक शादी की क्या, दूसरे धर्म वाले जो फॉलोअर्स हैं वो एक शादी करने में विश्वास रखते रहे या अनेक शादियां की? तो एक के साथ प्रवृत्ति निभाई, एक के साथ प्रवृत्ति निभाने में पक्के रहे कि ठोकर मार दी, ठोकर आया ना तो निवृत्ति मार्ग वाले हुए ना। कोई कहे विदेशियों के लिए तो आप ये कह सकते हैं, विदेशी धर्म पिताओं के लिए, इब्राहिम के लिए कह सकते हैं, क्राइस्ट के लिए कह सकते हैं, मोहम्मद के लिए कह सकते हैं, उनके फॉलोअर्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन भारतीय धर्म पिताओं के लिए तो आप नहीं कह सकते। जो भारतीय धर्म पिताएं हैं, बुद्ध, गुरु नानक, सन्यासी, आर्य समाजी, वो सब कमजोर धर्म पिताएं हैं। वो विदेशियों के सामने झुकते रहे हैं। क्या विदेशियों ने जब आक्रमण किए तो बौद्धियों ने हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म। सन्यासियों ने भी यही किया, अहिंसा परमो धर्म। अरे स्वयं तो तुमने हाथ उठा दिए, युद्ध नहीं किया, देखने में आया दुनिया वालों को हिंसा नहीं की, शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अपने बाल बच्चों का क्या हाल किया है? बाल बच्चों को, बीबी बाल बच्चों को वो विदेशी उठा ले गए कि छोड़ गए है? क्या कर गए? ले गए, दास दासी बनाया, और जन्म जन्मांतर के दास दासी बनते रहे, उनके अंदर संस्कार भर गए दासत्व भाव के। तो बताओ, जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सका, अपने परिवार के लिए अहिंसक नहीं बन करके रह सका जीवन में, वो दूसरों के प्रति अहिंसक बन सकेगा? बन सकता है? अरे नहीं बन सकता। यही बात है, चाहे विदेशी धर्म पिताएं हों, चाहे स्वदेशी धर्म पिताएं हों।
है
रुको, सिख स्थान की मांग किसने की, सिखों ने की या नहीं की? आतंकवादी हुए या नहीं हुए? विदेशियों को फॉलो करने वाले हुए या नहीं हुए? सूर्यवंशी तो नहीं ऐसे हुए? प्राय लोप होता है तुम्हारा धर्म। क्या ये जो गीता ज्ञान दिया गया जिनको और जिन्होंने फॉलो किया, उनका धर्म सत्य सनातन धर्म, और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस कैटेगरी के हैं, जो प्राय लोप है वो धर्म, लेकिन पूरा लोप नहीं है। आज भी भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, ऐसे ऐसे संगठित परिवार देखे जाते हैं जिनका एक मुखिया होता है परिवार में राजा के समान, पूरे परिवार के भातियों के ऊपर राजा की तरह कंट्रोल करता है। एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा पूरे परिवार की, एक ही कुल, एक ही मत। ऐसा नहीं परिवार का एक भाती कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा भाती बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, तीसरा भाती जो है वो तृणमूल को जन वोट देगा, चौथा भांति कम्युनिस्ट को वोट देगा, नहीं करेगा। पूरा परिवार एक के मत पर संगठित रह के चलता है। ढूंढिए ऐसे परिवारों को, ऐसे भी हैं परिवार, एक चूल्हे पर रोटी बनती है और एक बाप के सारे ही भाई और बहुएं पवित्र जीवन बिताती हैं। विचार का नाम निशान नहीं, छोटे भाइयों की जो श्रद्धा है बड़े भाइयों और भौजाइयों के प्रति माता की तरह रहती है। जो हमारे भारत की परंपरा है, लक्ष्मण ने जिस परंपरा को निभाया, सीता को किस रूप में देखा? माता के रूप में देखा। ऐसे परिवार प्रायः लोप हैं, पूरे लोप नहीं। तो चाहे सिख धर्म ही क्यों ना हो, उसमें से भी ऐसा छेड़ा फूट पड़ता है जो दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। जो असल सूर्यवंशी हैं, वो कभी किसी से प्रभावित नहीं, दूसरों का ज्ञान ही नहीं सुनेंगे। जैसे दूसरे धर्म के फॉलोअर्स इतने पक्के होते हैं कि जो पक्के क्रिश्चियंस होते हैं वो बाइबल के अलावा कोई धर्म ग्रंथ नहीं छूते, पक्के इस्लामी होते हैं वो कुरान शरीफ के अलावा कोई धर्म ग्रंथ छूते ही नहीं, सुनते ही नहीं, इतने पक्के होते हैं अपने धर्म के। ऐसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म में जो सूर्यवंशी हैं पक्के, वो सिवाय गीता के और कोई भी ग्रंथ को मानने वाले नहीं। लेकिन गीता के जो इंटरप्रिटेशन हुए हैं, व्याख्याएं हुई हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा, उन मनुष्य गुरुओं के द्वारा भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि जो शिव बाप अपने बड़े बच्चे शिव बाबा को इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो बनाकर जाता है, क्या विश्व पिता बनाकर जाता है, सारे विश्व की बादशाही सौंप कर जाता है, वो विश्व पिता पहले पहले क्या पार्ट बजाता है? माँ का पार्ट बजाता है या बाप का पार्ट बजाता है? माँ का पार्ट। उसको कहते हैं भारत माता। कैसी माता? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, सदैव ज्ञान की रोशनी में ही प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली। प्रैक्टिकल को ही ज्ञान कहा जाता है। क्या? सारा है ज्ञान, मुख से सुनना, मुख से सुनाना ज्ञान, कान से सुनना, कान से सुनाना है ज्ञान, बुद्धि से समझना, बुद्धि से समझाना है ज्ञान, लेकिन कर्मेंद्रियों में आचरण नहीं है। तो राम है या रावण है? रावण। इसलिए राम ही रावण बनता है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बता दिए ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्योंकि पुरुष जो सत्य है पुरुष के जीवन में, क्या सच्चाई है, सत्य है, उसे धारण करके नहीं रख सकता प्रैक्टिकल जीवन में, उसके लिए माता ही चाहिए, कन्या ही चाहिए। वो ही धारण करने वाली माता कन्या धरणी कही जाती है, वही राजधानी है असली, राजा की धारणा शक्ति, इसलिए माता का नाम मागे। और ये माता को आगे करने का काम परम पुरुष का है। वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो कन्याओं माताओं को आगे करता है। क्या वो कन्याएं माताएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं या चैतन्य बुद्धि है पुरुषों के मुकाबले? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। इसलिए जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें फैलाते हैं, दो दो से चार, चार से आठ, मत मतांतर बढ़ते ही जाते हैं, तब से अर्थात द्वापर युग से इन द्वैतवादी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में ये भारत की माताएं कन्वर्ट हो जाती। क्या कहा? सब नहीं, नौ कुरियों के नौ प्रकार के ब्राह्मण माने गए। जब वो आता है तो नौ ऋषि मुनि हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मुनि, जिनके नाम पर ब्राह्मणों की नौ कुरियां गिनी जाती हैं। उन नौ कुरियों के ब्राह्मणों की शूटिंग अभी हो रही है, जो नौ धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई है आत्माएं। उनमें एक कुरी है सूर्यवंशियों की, उनकी माता है कौन? वही कौन सी माता जो सूर्य ने आकर के पहली माता बनाई? परम ब्रह्म, जो शास्त्रों ने आज भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुमयि। उस परम ब्रह्म को नमन करना है और कोई ब्रह्मा को नमन नहीं करना है। और ब्रह्मा, ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ, और माताएं हैं उस परम पुरुष की ही माताएं हैं, लेकिन अव्वल नंबर माताएं नहीं है, नंबर वार माताएं। कोई दो नंबर की, कोई तीन नंबर की, कोई चार नंबर की, तो उनको नमन नहीं करना है। क्योंकि जो बाद वाली माताएं हैं उनसे जो पैदाइश होती है वो पावरफुल पैदाइश नहीं हो सकती। तो बताया कि सतो प्रधान कैसे बने? कैसे बने? संघ के रंग से तो पतित बने, अनेकों के संघ के रंग से पतित बने। तो आप क्या करें? एक ऊंचते ऊंच को पहचाने। कैसे पहचानेंगे? मैं आत्मा बिंदु, सभी आत्माएं बिंदु, धर्म पिताएं बिंदु, धर्म पिताओं का बाप ग्रैंडफादर वो भी बिंदु, जिसे आदम कहा जाता, और उसका भी बाप सुप्रीम सोल वो भी बिंदु। कैसे पहचाने? बिंदु 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 बिंदु, कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु श्रेष्ठ? पहचानने का तरीका क्या निकालें? कैसे पहचाने किसे मैं प्रवेश किया?
ज्ञान से।
आज ढेर सारे बाबाए हैं, कैसा कैसा बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, लाखों की लाखों तादाद के लोग जाके सुनते हैं। गुजरात में एक रामचंद्र डोंगरे हुए थे, वो रामायण की कथा जब करते थे, दूर दूर तक जहां तक नजर जाए पांडाल ही पांडाल पड़े रहते थे। उन पांडालों में लाखों की तादाद के लोग बैठते थे और जब कथा करते थे रामायण की, तो रामायण की कथा करते समय जार जार रोते थे और सारी पब्लिक रोने लगती थी। वो अज्ञान सुनाते थे है? क्या कहें, ज्ञान नहीं सुनाते थे? क्या नहीं करते थे?
पेट का धंधा करते थे।
आपने देखा था वो कितने त्यागी थे, कितने संग्रही थे, आपने देखा उनके जीवन को?
आकर्षित करते थे सबको अपने
तरफ।
अरे किसे कहेंगे ज्ञानी? उसका वो ज्ञानी का तौल क्या है, निर्णय कैसे करेंगे कि ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है, कैसे पहचानेंगे? अभी 80 साल हो गए हम ब्राह्मणों को, कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ईश्वर मिला है, हमें ईश्वर का ज्ञान मिल गया। क्या जो परम पुरुष है, परम ज्ञानी है, उसको पहचाना? पहचान लिया है? हाथ उठाओ, कौन कहता है पहचान लिया?
परम ब्रह्म में शिव आता है, परम ब्रह्म में शिव प्रवेश करते हैं,
परम ब्रह्म में शिव आता है उसको हमने पहचान लिया। साकार में या निराकार में या आकार में, कैसे पहचाना? साकार में पहचान लिया। पहचान लिया जिन्होंने, वो निश्चय बुद्धि हो गई ना, उनका जन्म हो गया ना भगवान से है? निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ या मृत्यु हुई? जन्म हुआ। अब मृत्यु लोक में तो नहीं है कोई ब्राह्मण, ऐसे तो नहीं है आज जन्म लेते हो निश्चय बुद्धि बनते हो और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हो। 80 साल में क्या हुआ अभी तक? मृत्यु लोक चल रहा है या अमर लोक शुरू हो गया? हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अभी मृत्यु लोक है या अमर लोक है? क्या है, है? तो मृत्यु लोक, मृत्यु मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, मृत्यु लोक में मरेंगे, नरक में मरेंगे, तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। तो मृत्यु लोक है, अमर लोक अभी है ही नहीं, तो सभी मृत्यु लोक में हैं या आप अमर लोक में पहुंच गए?
शरीर
मृत्यु लोक में और आत्मा अमर लोक में पहुंच गई है?
आत्मा भी यही है,
आत्मा भी यही शरीर में बंधी हुई है और शरीर भी मृत्यु लोक। पता नहीं कब रास्ता चलते ट्रक आए कुचल जाए, कोई पक्का है? कुछ पक्का नहीं। कुछ पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का नहीं। आज निश्चय बुद्धि की जन्म की लिस्ट में आते हैं, बाप के घर में जाकर के 9 महीने के बराबर 9 दिन की ज्ञान की भट्टी में पकते हैं, बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। हम अपन को पक्का कर लेते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव है। जन्म लेते हैं या नहीं है? बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं ना। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी तो कहा जाएगा बाप का बच्चा हुआ। फिर आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं है? अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं है? नंबरवार हैं। कोई 100 साल के होके मरेंगे, कोई 50 साल में मर जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तो अमर लोक में हैं, हम नहीं मर सकते, तो माया कहती है अभी फाइनल पेपर हो गया है? 80 साल में अभी कितने मर गए होंगे। यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली थी उस समय के ब्राह्मणों का कहना है कि खून निकालते थे शरीर में से और खून से लिख करके देते थे, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हम भगवान बाप के बच्चे बन गए और वो भी मर गए। अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, कोर्ट के नोटरी के सामने जज के सामने लिख कर देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, हम बाप के घर में भी हो करके आ गए, बाप के घर में हमने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया आपने? कहाँ? बाप के घर में पहुंचे ना। और जितने भी ब्राह्मण हैं एडवांस में की दुनिया में वो सब कहते हैं कि हमने बाप के घर में जाके जन्म लिया, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। उनमें से कितने हो गए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए 80 साल के अंदर। तो ये तो पक्का हो गया कि ये मृत्यु लोक ही है, ये अमर लोक नहीं है। और बाबा कहते अमर लोक में मरेंगे तो अमर लोक में जन्म होगा, मृत्यु लोक में मरेंगे तो मृत्यु लोक में ही जन्म होगा। तो अभी हम सब कहाँ हैं? तो कहाँ जन्म लेंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, शरीर से ही मृत्यु होती है। यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे है? तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें अमरनाथ बाप मिल गया। ऐसा अमरनाथ बाप मिल गया जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में तो क्या, जो 5 सीन हैं संगम युग को मिलाकर, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, उन 5 युगों में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर से भी मरता नहीं। हम उस अमरनाथ के बच्चे बन गए क्या? उस अमरनाथ को पहचान लिया क्या? पहचान लिया मना पक्का पक्का एवरलास्टिंग पहचान लिया या कुछ संशय आता है? कितना टाइम हो गया जन्म लिए भट्टी किए?
2005
से लेकर के अब तक बाप के बच्चे बने तो बाप के असली बच्चे वो ही तो कहे जाएंगे जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा हो ऊंचे थे ऊंचा और बच्चा लैट्रिन साफ करने लगे, सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे, तो कोई कहेगा कि ये बाप का बच्चा है, है?
नहीं
कहेगा। अब आपकी जिंदगी का धंधा क्या है 2005 से? नीचे ना देखो,
बाप को याद करना,
बाप को याद करना यही एक धंधा है। माने शंकर जी बनेंगे, एक शंकर का तो गायन है कि याद से विश्व की बादशाही प्राप्त की। इसके अलावा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सिर्फ याद के बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की हो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है या चार सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपने सिर्फ एक ही धंधा पकड़ा जिसकी कोई तौल नहीं है कि आप कितना याद करते हैं।
बाबा ने बोला ना,
याद में ही ज्यादा रहना और कुछ सेवा एवा नहीं करना।
वाचा से तो हुआ नहीं, अभी वाइब्रेशन से तो होगा।
वाचा से हुआ नहीं। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ब्राह्मणों को धंधा क्या बताया? वाचा से ही लेंगे, कानों से ही लेंगे। वाचा से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों को धंधा बताया ना? हैं? और चातुर्वर्ण ने माया सिस्टम, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, वो क्या कहता है? मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो चार वर्णों की रचना करता हूँ। ब्राह्मण धर्म क्या? जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, कम नहीं, उनको ही देवता कहा जाता है। और बाकी जो हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन धर्मों की स्थापना करता हूं कि नहीं? है चार वर्णों की, तो आपका एक वर्ण तो कट हो गया। आप कहते हम ज्ञान सुना नहीं सकते, ज्ञान पूरा सुन नहीं सकते, तो बाप का धंधा पकड़ा। अरे सच्चा सच्चा बोलो,
ज्ञान सुनना तो है, सुना ज्ञान सुना जब भी तो पहचाना,
पूरी परीक्षा होगी फाइनल, तभी तो रिजल्ट निकलेगा कि हम पक्के ब्राह्मण बने हैं या नहीं बने हैं। पहले से ही कोई डिंग मारने लगे कि हम तो पक्के ब्राह्मण बन गए, हम तो पक्के सुदेवता 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। अभी तो बोला जो बाप का धंधा सो मेरा धंधा,
माया तो लास्ट तक इसी को छोड़ती नहीं है।
अच्छा जो बाप का धंधा है वो ही धंधा पकड़ा है या दूसरे धंधे में लगे हुए हैं?
तो जो भी धंधा है वो करना पड़ता है,
करना पड़ता है ना, तो मजबूरी हो गई ना,
तो सभी करना पड़ता है,
सभी को। माने सरेंडर्ड हैंड है, जितने भी जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं वो सबने पेट का धंधा पकड़ रखा है, या तो नौकरी करें या पेट का धंधा करें, उनको पेट का धंधा छुड़वाए नहीं दिया उसने, नहीं छुड़वाया। तो फिर तो पहले तो पक्के ब्राह्मण वो बनेंगे जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो 16,000 की लिस्ट वाले पक्के ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, क्योंकि वो ही हैं जो राजयोग सीख करके राज घराने के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, चाहे वो देवता कुल हो, क्षत्रिय कुल हो, वैश्य कुल हो या शूद्र कुल में राजा बने। क्या राजा? पृथ्वी राज 1,000 साल पहले हुआ, कलयुग में हुआ, शूद्र कुल में हुआ या द्वापर में वैश्य हुआ? हजार साल पहले शूद्र कुल में हुआ ना, तो शूद्र कुल का राजा हुआ, उसके परिवार में, उसके राजघराने में जितने भी होंगे राज परिवार में, चाहे दास दासी का पार्ट बजाने वाले क्यों न हो, क्या वैसे तो फर्स्ट क्लास दास दासी, जो महामंत्री होता है, सेनापति होता है, वो भी उसका परिवार है, लेकिन वो उच्च कोटि के हैं। लेकिन नीची कोटि के भी दास दासी हैं तो परिवार में ही बनते, जो परिवार जन खाता है वो भी खाते। तो इससे साबित ये हुआ कि जो 16,000 का परिवार है ईश्वरीय परिवार, जो राजयोग सीखने वाले हैं, राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राज कुल में, राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो ही पक्के ब्राह्मण हैं। 100 पक्के ब्राह्मण राज घराने में जन्म लेने वाले राजाई चलाते हैं। देखो प्रधानमंत्री का ड्राइवर क्यों न हो, राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड क्यों न हो, इंडिया में कहीं भी जाएगा उसकी सत्ता चलेगी या नहीं चलेगी, है? चलेगी। तो अभी तो आप 16,000 की लिस्ट में भी नहीं है। आप कहते हम तो तीनों जो सब्जेक्ट है बाद वाले, वो पहला सब्जेक्ट ज्ञान और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट कौन सा, धारणा और सेवा, ये तीन सब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस नहीं देते, हम तो एक ही सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। या अरे ज्ञान को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो याद आ ही नहीं सकती। ज्ञान माने जानकारी, पक्की पक्की जानकारी, बाप कौन है, बाप का धंधा क्या है, जब आईडी लिया जाता है ना, आईडी प्रूफ, तो उसमें सब बातें देखी जाती है। नाम क्या है, काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं, नाम क्या है, एज क्या है और धंधा क्या है, मुख्य धंधा क्या है, व्यवसाय पूछा जाता है कि नहीं, तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये तीनों बातें ज्ञान में होनी चाहिए कि हमारे बाप का काम के आधार पर नाम क्या है, धंधा क्या है, धंधा का भी पता होना चाहिए, एज का भी पता होना चाहिए, एज क्या है। तो अगर सब बातों का पता है तो ज्ञान, ज्ञान ही नहीं है, बाप की बायोग्राफी को जानते ही नहीं है, जो बोला है बाप की बायोग्राफी बर्थ पाउन, बाप का जन्म बर्थ पाउन, और बाप के अलावा जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस संसार में, सबका जन्म कौड़ी मिसल, मुरली में क्या बोला, ब्रह्म वाक्य क्या है, क्या कौन सा जन्म है, बर्थ पाउंड, एक शिव बाबा का जन्म है बर्थ पाउंड, और उसके मुकाबले जो भी मनुष्य मात्र, जवाहरलाल नेहरू क्यों न हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो इस दुनिया का, उसकी जीवन की बायोग्राफी और उसका जन्म बर्थ पाउंड नहीं कहा जाएगा, कौड़ी मिसल जन्म है। तो हमने उस बाप को जान लिया, उसकी बायोग्राफी को जान गए, नहीं जान गए ना, बाप का धंधा ही अभी नहीं पकड़ा, नहीं तो बच्चा वो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, दूसरा धंधा कर ही नहीं सकता। ये नहीं, करना ही पड़ेगा। पड़ेगा माने मजबूरी है या स्वेच्छा है? क्या है?
स्वेच्छा
है। अपनी इच्छा है, बाप की इच्छा नहीं है कि मेरा बच्चा क्रिश्चियंस को फॉलो करे, मुसलमानों को फॉलो करे। क्रिश्चियंस मोस्टली देख लो कितने दिनों के बाद गिरजाघर में जाते हैं, संडे संडे, और मुसलमान जुम्मा जुम्मा, 7 दिन में 1 बार जाएंगे। और मंदिर में जाने वाले जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ भक्त कौन कहे जानेंगे? विक्रमादित्य फर्स्ट क्लास भक्त है या नहीं है? है? वो रोज मंदिर में जाता था, शिवालय में, सोमनाथ मंदिर में, या कब जाता था कब नहीं जाता था? 7 दिन में 1 बार जाता था क्या? ऐसे है, प्रेफरेंस देता है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, तभी एक बाप का वर्षा मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमने मुख से बोल दिया कि हमने पहचान लिया। पहचानना उससे कहा जाएगा जो हम दूसरों को भी पहचान दे सके। हम खुद पहचानते ही नहीं हैं और दूसरों को पहचान भी नहीं दे सकते, हमारी वाचा ही नहीं खुल रही है। कारण क्या हुआ? ये गला क्यों घुटा हुआ है? पूर्व जन्म में कहीं दूसरे धर्म में जाकर के हमने अपने धर्म की बदनामी कराई है और भयंकर बदनामी कराई है, इसलिए हमारा गला घुटा हुआ है, हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। अभी हमारा सद्भाग्य है जो बाप ने हमको ब्राह्मण बना लिया, ब्रह्मा का बच्चा माना ब्राह्मण। और ब्राह्मण अभी हम चाहे तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। क्या सूर्यवंशी बन सकते हैं या नहीं बन सकते? हैं? बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में चाहिए कि कौन से ब्राह्मण हैं जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज बन सकते हैं, सूर्यवंशी बीज 108 मणकों का दाना, 108 रुद्रमाला के मणके, वो सब सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे? हैं? अरे सारे ही सूर्यवंशी होंगे ना, लेकिन चारों सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे या कमजोर होंगे? चारों सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने वाला। और लगातार जब हम प्रयास करेंगे तो हम बाप के फर्स्ट क्लास स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकते? क्या कैसे बनेंगे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां ईश्वर के कार्य में झोंक दें, अपने पेट की परवाह न करें। कोई कहते हैं हमने जो रचना रची है उसका क्या होगा परिवार की? तो बाप का मुरली में ब्रह्म वाक्य में तर्क है, भारत के जो भी सन्यासी बने, सन्यास लेकर के जंगल में चले गए, अपने परिवार को बीवी बाल बच्चों को छोड़ गए, क्या उन बीवी बाल बच्चों को उनके संबंधियों ने नहीं संभाला, संभाला या नहीं संभाला? हैं? संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है, क्या हम पालन करता नहीं है, वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकटे क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार, गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से उन गुण और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाण, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है, इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं नहीं हूँ। क्या बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती? होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवार जनों ने उसे पाला, क्या पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? हैं? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है, नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। और बाप तो खुद ही कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य में, क्या तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, सूर्यवंशी बनेगा, क्या पूरा परिवार तुम्हारा ज्ञान में चलेगा। और ये भी गारंटी देते हैं कि दुनिया वाले करोड़पति अरबपतियों को जब घोर अकाल पड़ेगा, आने वाला है अब, उस अकाल में उन करोड़पति अरबपतियों को रोटी नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, तुम बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरी सेवा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, इतनी गारंटी दे रहा है, तो भी पेट की चिंता। पेट से पैदा हुए परिवारजनों की चिंता, उनके लिए भी गारंटी दे रहा है। क्या तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? जब ज्ञान में चलेगा तो तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, सहयोगी बनेगा। ईश्वरीय सेवा करेगा तो भूख मरेगा? भूख मरेगा? अरे संसार में वो जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, सारे जगत का नाथ। हमारे निमित्त मात्र से जो बच्चे पैदा हुए, परिवार बना, वो भूख मर जाएंगे, और 500-700 करोड़ वो भूखो नहीं मरेंगे। तो पक्का है क्या कि एक बात पक्की कर ले, सतो प्रधान बनना है तो उस एक ऊंचते ऊंच साकार सो निराकार को पहचानना है, और पहचान करके जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। अगर इतने हमने नहीं कर पाया तो हम बाप के बच्चे ही नहीं बने। जो बाप हमें राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, हम राजा बेटा नहीं है बाप के। राजयोग सीख रहे, राजयोग सीख रहे हैं तो राज को हमें जानना है कि क्या राज है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या। गुह्य राज भरा हुआ है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो हम सुने, सिर्फ सुन करके अंदर धारण कर लें। कोई बाप का बच्चा है, साहूकार बाप का बच्चा, करोड़पति बाप का बच्चा, करोड़ बाप की मिल्कियत को अपनी जेब में रख करके रहता है, और सारी मिल्कियत बर्बाद करता है, क्योंकि सारा जीवन जेब में रखा और अंत समय में या तो आग ने जला दिया या तो चोर डकैत ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो संपत्ति का सदुपयोग किया है कि कंजूस बनकर के दुरुपयोग कर दिया? क्या किया? सदुपयोग करना है। हमने सुना तो कानों से ज्ञान मिला, कान से सुन लिया, लेकिन बुद्धि लगा करके जो सुना है उसको फैसला कर लिया कि सुने सुनाए आधार पर हमने फैसला कर लिया कि वो है विश्व का मालिक, वो है शंकर जी, वो है रामबली आत्मा। अरे आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है। बाप भी कहते हैं, उनको बुद्धिमान दुनिया मानती है एटम बम बनाने वालों को, मैं उनको बुद्धिमान नहीं मानता। क्यों? कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसी दुनिया को खात्मा करने के लिए उन्होंने एटम बम बना लिए। वो मूर्ख हैं, बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तुम बच्चे हो। क्या जिस दुनिया में तुमको जाना है, नई दुनिया में, उस नई दुनिया का तुम निर्माण करते हो। क्या तुम नई दुनिया बनाने वाले हो बाप के सहयोग से? तो बनाएगा कौन? बाप को बुद्धि से पहचानेगा, वो बनाएगा। ये सिर्फ किसी ने कान से सुन लिया है, ब्रह्मा ने सारा ज्ञान कान से सुना। इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ले लो, कौन सी आत्मा है जिसने कान से सबसे जास्ती ज्ञान सुना है शिव बाप का? है ब्रह्मा बाबा, कान से सबसे जास्ती सुना, इसलिए उसकी यादगार है कर्ण। क्या उसकी यादगार? कर्ण उसकी यादगार है, गणेश बड़े कान वाला। क्या गणेश को बड़ा क्यों कहा जाता है देवताओं? पहले क्यों पूजा होती है? इसलिए पूजा होती है, उसने कान से जितना कान लगा करके सुना उतना और किसी ने नहीं सुना, और जो सुना हुआ है वो सुनाया भी सबसे जास्ती किसने? किसने सुनाया? ब्रह्मा की आत्मा ने ही सुनाया, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा, ब्राह्मणों का जन्मदाता। लेकिन क्या नहीं किया? बुद्धि से समझा नहीं, समझा भी नहीं और समझाया भी नहीं, सिर्फ सुन लिया, सुना लिया। वो तो भक्त लोग करते हैं। भक्त क्या करते हैं भक्ति मार्ग में? हैं? कथाएं सुनते हैं, विद्वान पंडित आचार्य कथाएं शास्त्रों में से पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं, सुनते हैं सुनाते हैं। सुनना और सुनाना ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग वो है जो भी सुना है उसे समझना और समझ करके दूसरों को सुनाना और समझाना, उसको कहेंगे ज्ञान मार्ग। और फिर इतना भी नहीं, वो भी रावण का ज्ञान हो गया। रावण प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मणों के बीच में कोई ब्राह्मण में ताकत नहीं थी जो रावण का मुकाबला ज्ञान में कर सके। लेकिन कर्म, कर्म इंद्रियों से, कर्म कैसे? चोर डकैत के, तो पक्का ब्राह्मण हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए बताया तीनों का बातों में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सुनना सुनाना भी, समझना समझाना भी, जो तीसरे नेत्र का काम है बुद्धि नेत्र, और फिर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान समाया हुआ हो, करना भी और कराना भी। सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां चाहे कर्म इंद्रियां, सब व्यभिचारी, विचार का नाम निशान न हो प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों में। प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों में अगर विचार है तो इसका मतलब है कि देव आत्मा है या दैत्य है? क्या है? दैत्य है, राक्षस है। दैत्य माने द्वैतवादी, इसलिए ये पक्का करना है।
प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल तो बाहर की दुनिया में होना चाहिए।
हैं?
बाहर की दुनिया में प्रैक्टिकल में होना चाहिए।
होना चाहिए। शंकर जी क्या करता है बाहर की दुनिया में? अरे तुमने शंकर जी को पहचाना ना? अरे पहचान लिया कि नहीं? हैं?
पहचान लिया।
पहचान लिया, लेकिन क्या करता है वो? अरे कर्मेंद्रियों से क्या करता है? विष नहीं पीता। पराई स्त्री को यूज करना, पर पुरुष को यूज करना, ये विष है। इससे जानवरियत की संतान पैदा होती है। शेर 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 हो करके भी, अच्छा शेर की बात छोड़ लो, वो कौन सा जानवर हुआ जो लाखों साल पुरानी जिसकी हड्डियां बताई, डायनासोर। डायनासोर बड़ा लंबा चौड़ा घड़ियाल जैसा दिखाई, क्रोकोडाइल जैसा, हाँ मगरमच्छ जैसा, तो कभी हुए हैं क्योंकि उनकी हड्डियां मिली है क्रोकोडाइल्स की, वो उसका नाम डायनासोर की हड्डियां मिली ना, इससे साबित हुआ कि हाँ दुनिया में कभी थे। लेकिन जहां भी जिस दुनिया में भी जिस जंगल में भी वो हुए, उस जंगल में आग लग सकती है या नहीं लग सकती है? उस सारे जंगल में आग लग जाए और एक ही मादा बचे या एक ही जेंट्स बचे, तो क्या उसका संबंध क्रोकोडाइल के साथ नहीं हो सकता? उसकी इंद्रियों का संबंध जो है, कनेक्शन क्रोकोडाइल के साथ नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हो जाता है। और फिर उससे जो संतान पैदा होगी वो नीची कोटि की संतान होगी या क्रोकोडाइल जैसी ही होगी? नीची कोटि। यही कारण है कि घोड़े से खच्चर पैदा होता है। क्या? वजन ढोने वाला जो घोड़ा होता है ना, खच्चर कहते हैं। और खच्चर से गधा पैदा होता है। ये संक्रमण की बात है। ये संक्रमण से नीची कोटि की पैदाइश होती है। इस रहस्य को ऋषियों मुनियों ने जाना और भगवान ने ये सिखाया कि श्रेष्ठ का संग करेंगे तो संतान श्रेष्ठ बनेगी और भ्रष्ट का संग करेंगे तो संतान भ्रष्ट पैदा होगी। तो ये नियम है। क्या? जैसा संग वैसा। इसलिए जो सूर्यवंशी है वो श्रेष्ठ रूपी वृक्ष में ऊंचे ऊंचे ऊंची स्टेज में जाते हैं, जन्म जन्मांतर का सुख भोगते हैं। इसलिए बोला कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं, 82-83 वर्ष सुख भोगते हैं। बताओ वो बच्चे कौन से धर्म के होंगे, कौन से वंश के? सूर्यवंशी होंगे, नहीं तो बताया। और धर्म के लोग जो हैं फॉलोअर्स, वो इस दुनिया में आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। और तुम बच्चे 3/4 सुख और 1/4 दुख भोगते हैं, चार युगों में। और तुम बच्चों में भी कोई कोई बच्चे हैं जिनके लिए बताया 82-83 वर्ष तक भी सुख ही सुख भोगते हैं, दुख नहीं भोगते। क्या कारण? क्या कारण हुआ जो 82-83 वर्ष तक कोई कोई बच्चे हैं जो सुख भोगते हैं? कोई कारण बना कि नहीं बना? कारण ये बना कि संगम युग में जिन्होंने उस बाप को पहचाना, कौन से बाप को? साकार सो निराकार बाप को पहचाना, पक्का पक्का, वो 8 बच्चे निकले। कितने? 8 बच्चे निकले जो दक्षिण भारत में जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, फखर आना चाहिए दक्षिण भारत वालों को, सम्मान आना चाहिए। कि दक्षिण भारत में उनके मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, दक्षिण भारत में उनकी पूजा होती है, नॉर्थ इंडिया वाले उन आठ को उतना नहीं जानते। क्या कारण है? उन आठ ने जितना उस साकार सो निराकार बाप को और उसकी जीवन कहानी को, क्या उसकी होल लाइफ को जितना जाना, पहचाना, समझा, उतना और किसी ने नहीं समझा।
तो आठ का पहचान कैसा होगा?
अभी बताते हैं। उन आठ की पहचान है जब से ज्ञान में आए होंगे, जिस दिन से बाप के ऊपर निश्चय हुआ होगा, माने जब से भट्टी की होगी, बाप के घर में जन्म लिया होगा, तब से लेकर के वो अपनी जेब का एक पैसा भी अपने संबंधियों को, संपर्कियों को नहीं देंगे। क्या कहा? नहीं समझ में आया? वो धन कहाँ खर्च करेंगे? ईश्वरीय सेवा में खर्च करेंगे। वो तन की ताकत, तन से कर्मेंद्रियों की जो काम है, वो ईश्वरीय सेवा में कर्मेंद्रियां लगाएंगे। उनकी हिस्ट्री देख लेना, आगे चल के नोट कर लो। उनकी हिस्ट्री ये होगी ज्ञान में आने के बाद कि वो अपने तन की सेवा ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, पेट के लिए नहीं लगाएंगे, वो खिचड़ी खाने से नहीं डरेंगे। क्या? हाय मेरे बच्चों को खिचड़ी मिलेगी, कैसे जिंदा रहेंगे? नहीं, उन्हें बाप की वाणी पर विश्वास है, बाप के ऊपर विश्वास। मुरली से प्यार माना, मुरली घर से प्यार है। वो जानते हैं कि बाप कहते हैं कि मैं अच्छा अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दूंगा। क्या? अच्छा अच्छा रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दूंगा, लेकिन जितनी जरूरत है जीवन जीने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, उतना जरूर दूंगा। जिस तन में प्रवेश करता हूं, उस मुकर्रर रथधारी को भले मिले या न मिले, लेकिन जिन बच्चों को सरेंडर करके रखता हूं, क्या उनको रोटी और कपड़ा और मकान, जिस तन में प्रवेश करता हूं, उनके मुकाबले अच्छा ही अच्छा मुहैया होगा, उनको भटकने नहीं देता। हाँ, ये बात जरूर है, परीक्षा तो जरूर होगी। क्या क्या होगा? फाइनल पेपर जरूर होगा, जिसमें फाइनल पता चले कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले से ही बता दिया। क्या पेपर है लास्ट? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा? देख से नष्टो मोहा। देह के संबंधियों से नष्ट मोह। सबसे पहले देह का कौन संबंधी है जिससे पहले नष्ट मोह बनना है? इससे देह के कौन से संबंधी ने या कौन से संबंधी से जीवने हमको सबसे जास्ती प्यार मिला? कोई है या नहीं? माँ। सब माँ के लिए कहा, अम्मा मरे तो हलवा बना के खाओ खुशी में। क्या कहा? क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं ब्राह्मणों के दुनिया में, ब्राह्मण बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। प्रैक्टिकल में देख लो, दिल्ली में जाके पूछो, जिस दिल्ली के लिए अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, वहां जाके पूछो। ये जब से गुरुओं का लफड़ा निकला है अखबारों में, टीवी चैनल्स में, राम रहीम हो या क्या नाम आशाराम बापू जैसे जो भी हो, उनका लफड़ा सुन सुन करके जो भी कन्याओं की माताएं हैं वो घर में बाय बायरा फैलाए हुए हैं, हमारी कन्या को वापस लाओ, और रोज आ रहे हैं।
भट्टी वाला बाबा के नाम से हमने लिखा
है। हाँ, भट्टी वाला ही बाबा है, तुमको भट्टी कराए कि नहीं, तो तुम भी कहो भट्टी वाला बाबा है।
न्यूज में ऐसे आ रहा
है। हाँ, न्यूज में ऐसे आ रहा है, तो न्यूज वाले तो झूठे हैं या सच्चे हैं? बाबा ने पहले ही मुरली में कहा, झूठ है झूठ मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, ऐसे बोला हुआ। जितना भी सुनाएंगे अखबारों में, जितना भी टीवी चैनल्स में दिखाएंगे, वो सारी बातें झूठ दिखाएंगे, क्योंकि ये है ही झूठ खंड या सच खंड, झूठ खंड। तो सबसे बड़ा दुश्मन संबंधी कौन? सरेंडर्ड कन्याओं का माँ बाप, बाद में माँ पुले आती है बाप को, क्यों? क्योंकि जो बाप हैं वो सब पुरुष हैं, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, उसकी भाषा में, मैं नहीं कहता, वो कहता है पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। वो बाप जिन्होंने कभी स्वेच्छा से सरेंडर किया था कन्या को, वो बाप माँ के पुलियाए में आ जाता है, माँ के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि वो दुर्योधन है, एकांत में माँ को पाकर के छेड़छाड़ किए बगैर रह नहीं सकता। काम विकार हावी हो जाता है और दुष्ट कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। कहो, सब पुरुष पिता इस दुनिया में दुर्योधन है या नहीं है? प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो बात छोड़ दें, जब माँ ही बड़े ते बड़ा दुश्मन बन गई, जिसको हमने जीवन में सबसे बड़ा मित्र समझा था दुनिया, तो फिर और क्या बाकी बचा? सारे संबंधी धोखेबाज हैं। बाप बाप नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगी, और वो अभी भी देखा जाता है इस दुनिया में। क्या भय वर्ण संकर सबै, सब वर्ण संकर शूद्र बन गए, शूद्रों के कर्म करने वाले। कैसे? बाप बेटी को नहीं छोड़ता एकांत पा करके, भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, नीचा गिरा देते हैं, जीवन खराब कर देते। तो देखो ऐसी दुनिया बन गई कीड़े मकोड़ों की। तो बाप कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उससे काम लेने के लिए क्या नाम रखता हूं? परम ब्रह्म, बड़ी मां। जिससे काम लेने के लिए माता नाम रखता हूँ। दुनिया में आज भी भारत में खास उसकी जय जयकार होती है, झंडा हाथ में लेके कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे पिता कहाँ गया? माता विधवा है क्या है? पिता का नाम क्यों गुम कर दिया? क्योंकि माता ने ही सत्य की शक्ति को धारण किया पहले पहले। किसने? माता ने जो पार्ट बजाया, उस माता के सत्य की शक्ति धारण करने से सूर्यवंशी बच्चों का जन्म हुआ, रुद्रमाला का। और बाप जो साकार में माँ की तरह बाप का भी पार्ट बजाता है, लेकिन बाद में वो क्या पार्ट बजाता? क्या पार्ट बजाता मुरली में? क्या बोला ब्रह्म वाक्य में? बोल दिया ऐसे दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, चाहे शंकर जी हो जो टनाटन बैठे हुए हैं, क्या है दुर्योधन दुशासन विषपाई है या नहीं है? है या नहीं है? है तो अब्बल नंबर भी कोई होगा या नहीं होगा? जो होगा कि है? होगा है नहीं? अरे अखबार वाले क्या बोल रहे हैं? वो भट्टी वाले बाबा के बारे में आपने क्या सुना? देखा टीवी? हाँ, भट्टी वाले बाबा के लिए क्या कहते हैं? क्या करता है? हाँ, तो साबित हो गया कि माता का नाम भारत में इसलिए आगे रखा गया क्योंकि भगवान भी जब आते हैं नई दुनिया रचने के लिए, तो माता लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा को आगे रखते हैं। तो पुरुष चोला है या स्त्री चोला? वो लक्ष्मी जिसके हाथ में झंडा दिया जाता है, भारत के मैप में खड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो लक्ष्मी माता भारत माता कही जाती है या नहीं कही जाती? जो अव्यक्तवाणी में, पहली अव्यक्तवाणी में लास्ट वाक्य बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? कौन सा अंत? महाशिवरात्रि। जब महान ते महान, बड़ी ते बड़ी शिव की अज्ञान अंधकार की रात्रि इस सारी दुनिया में फैल जाएगी। बाहर की दुनिया तो अज्ञानी है ही है या नहीं है? भौतिकवादी है या नहीं? भौतिकवादी है। पंचभूतों के ऊपर सारा दिमाग लड़ा रहे हैं, सारी तन की ताकत लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं है? सारी दुनिया भौतिकवादी, और उनको फॉलो करने वाले जो बंदर हैं भारत के, जिन बंदर संप्रदाय का राम भगवान ने आसरा लिया था, वो भी बड़े भिखारी हैं या थोड़े भिखारी हैं? बड़े भिखारी। तो ऐसे बंदरों की दुनिया में भगवान आकर के कन्याओं माताओं को विजय का झंडा फहराते हैं, देते हैं, ज्ञान का कलश देते हैं। शंकर जी को नहीं देते हैं, ब्रह्मा के हाथ में नहीं देते हैं, किसको देते हैं? लक्ष्मी को ज्ञान का कलश दिया जाता है। क्या? इसलिए जब भी दीपावली आती है तो ज्ञान के दीपक जलाए जाते हैं, वो इस समय संगम युग की यादगार है। ज्ञान के जो दीपक जलाए जाते हैं, उन दीपकों को जलाने का श्रेय किसको मिलता है? माता को मिलता है। वो उस संगठन का गेट काटती है, वो फीता काटती है, उद्घाटन करती है, प्रैक्टिकल ज्ञान देती है। ऐसे नहीं सिर्फ सुनकर छोड़ देती, ऐसे नहीं सिर्फ समझ के छोड़ देती, सुनती भी है, समझती भी है और प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके भी दिखाती, ज्ञानेंद्रियों से भी करके दिखाती। अब भी विचारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से भी अभी विचारी पार्ट बजाकर दिखाती। सारे पुरुषार्थी जीवन में उसका पुरुषार्थ देखो, अब विचारी पार्ट बजाती या विचारी पार्ट बजाती है? अब विचारी पार्ट बजाती। इसलिए बोला कि वो भारत माता शिव शक्ति है, जब निकलेगी तो अंधेरा नाश हो जाएगा। जैसे अमृत वेले सवेरे देखा होगा ध्यान से, सूर्य पहले निकलता है या लाल लाल लालिमा पहले निकलती है? हैं? लालिमा पहले निकलती है और लालिमा से भी पहले कालिमा आ जाती है आगे आगे। लालिमा पीछा करती है कालिमा का, महाकाली का, और कालिमा भागती है, लालिमा उसका पीछा करती है और लालिमा के पीछे पीछे ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो बताया सतो प्रधान तो बनना है, लेकिन सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? हैं? बाबा ने तो बता दिया क्या करना है। क्या बता दिया? अरे भूल गए, माम एकम याद करो। क्या बता दिया? किसने बता दिया? हैं? परम ब्रह्म ने बताया, परम ब्रह्म बताता है कि मुझे याद करो। माता बताती है, माता बताएगी तो गुलजार दादी भी बताएगी कि मुझे याद करो। है? ब्रह्मा बाबा भी बताएगा मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा ने कहा तो मेरे को तो याद नहीं करना, मेरा फोटो भी नहीं रखना। अगर फोटो भी रखेंगे तो भी पतित बन पड़ेंगे, ऐसे बोला है। तो परम ब्रह्म ने बोला कि मुझे याद करो,
हैं?
शिव बाबा ने बोला मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि परम ब्रह्म को भी ज्ञान देने वाला कौन है?
शिव बाबा। माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, वो जड़त्वमयी बुद्धि, उसको प्यार चाहिए। क्या? क्या चाहिए?
प्यार
चाहिए। कैसा प्यार चाहिए? दिखावे का प्यार चाहिए या सच्चा प्यार चाहिए? है? सच्चा प्यार चाहिए। देह का प्यार चाहिए
या मन बुद्धि की एकाग्रता उसी तरफ जिसकी लगी रहे वो प्यार चाहिए? शंकर जी के मन बुद्धि की एकाग्रता किसके ऊपर रही? है? वो तो निराकार है। शंकर जी साकार और निराकार का मेल है या सिर्फ निराकार है? शंकर स्वयं क्या है? पुरुषार्थी तो है, लेकिन निराकार है या साकार है या निराकार साकार का मेल है? मेल है, लेकिन जो साकार है पुरुषार्थी जीवन में वो अधूरा है। शरीर रूप अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है, लेकिन संपूर्ण बनता है या नहीं बनता है? संपूर्ण बनता है। जब संपूर्ण बनता है तब की यादगार बनती है मंदिर में, क्या? माम एकम नमस्कुरु, मुझे एक को नमन करो, कोई दूसरे को नमन नहीं करना है। मुझे एक कौन? साकार सो निराकार। साकार भी संपूर्ण और निराकार भी संपूर्ण। निराकार आत्मा वो भी संपूर्ण शिव समान, और उसका जो साकार शरीर है वो साकार शरीर भी तीनों काल से पार्ट बजाता हुआ क्रॉस कर जाता है तीनों काल को, या क्रॉस करने से रह जाता है? क्रॉस कर जाता है, इसलिए वो काल जयी है या काल उसे खा लेता है? हैं? काल जयी है, वो कालों का काल है, महाकाल है, उसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा लेकिन उसको उसको कोई नहीं खा सकता। इसलिए बताया कि वो साकार भी है और निराकार। निराकार भी ऐसा है जो इस सच रूपी रंगमंच पर कभी नदारत नहीं होता, लोप नहीं होता, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है या शरीर से लोप हो जाता है? शरीर सहित रहता है या शरीर भी नष्ट हो जाता? शरीर सहित रहता है। बाकी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर के साथ रहे, इसलिए वो ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि पर। वो सत्य है लेकिन सिर्फ संगम में, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में होता ही नहीं। कौन? वो निराकार, इसलिए उसकी बात ही नहीं। इसलिए गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस सच्चे रूपी रंगमंच पर जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो सत्य कभी भी लोप लुप्त नहीं होगा। इस सच्चे रूपी रंगमंच पर सदा काल रहेगा, सदा काल रहा है और सदा काल रहेगा और रहा था। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वो सत्य है, और वो तीनों काल में सत्य है, है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदा सत्य प्रेजेंट रहता है? अरे बोलो भाई, नहीं रहता। वो सिर्फ संगम पर रिहर्सल कराने के लिए डायरेक्टर के रूप में आता है और वापस चला जाता है। किस लिए आता है? नई सृष्टि की राजधानी स्थापन करने के लिए आता है। बोलता भी है मैं आता हूँ तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। धक माना एक सेकंड में तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूँ। कैसे? वो आना हुआ और साथ में लक्ष्मी का आना हुआ। लक्ष्मी आएगी शहद की रानी, शहद की मक्खियों की रानी है ना, वो आएगी तो पीछे पीछे सारा सारा झाड़ आएगा। 16,108 गोपियां सब इकट्ठी हो जाएंगी। इसको कहते हैं गौ वर्धन पहाड़ उठा दिया। क्या गौ वर्धन बढ़ाने का पहाड़, पहाड़ जैसा उठा दिया। किसने उठाया? भगवान ने उठाया। कौन सी उंगली से उठाया? पांच पांडव, पांच पांडवों में जो सबसे छोटा पांडव सिख धर्म से निकलता है, पंजाबी खून कमजोर है या पावरफुल है? ये तो नहीं है, है? ये तो नहीं है, कमजोर से कमजोर है। उस कमजोर सहयोगी के द्वारा, बताओ ये कमजोर सहयोगी कौन है? पांच पांडवों में से ये एक नकुल, सहदेव। क्या बताया? एक बताता है नकुल, एक बताता है सहदेव। सही क्या है? सहदेव, सहदेव माना जिसने देवताओं को सहयोग दिया, असुरों को सहयोग नहीं दिया। कौन है वो जिसने देवात्माओं को ही सहयोग दिया, रुद्रमाला को ही सहयोग दिया? भले रुद्रमाला का जो बाप है उसको सहयोग नहीं भी दिया तो भी रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको सहयोग दिया, और सहयोग दे करके उनको देव पद भी दिलाया। इसलिए बाप ने ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं, और प्रजापिता जगदम्बा के द्वारा सारे बच्चों को वर्षा देता है। क्या कहा? किसके द्वारा? जगदम्बा माने महाकाली, महाकाली के द्वारा ऐसा वंडरफुल पार्ट चलता है कि उन महाकाली के द्वारा जो भी सारी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला कही जाती है सबको सरेंडर करती है अपने अंदर, राज करेगा खालसा। क्या? खालिस माने पवित्र, पवित्र आत्मा जो भी है इस दुनिया की वो राज करेगी। कैसी पवित्र आत्मा? जो विष्णु के चित्र में लेफ्ट हैंड में नीचे वाला हाथ दिखाया है। क्या है? लेफ्टिस्ट का काम करने वाला, बामांगी। क्या? कौन सा? क्या कहते हैं? बाम मार्ग में जाने वाला। कैसे मार्ग में जाने वाला? बाम मार्ग में जाने वाला। बाम मार्ग क्या है? द्वैतवादी द्वापर युग से कौन सा मार्ग शुरू होता है? बाम मार्ग शुरू होता है। इस्लाम धर्म आता है बाम मार्ग में खींच के ले जाता है देवात्माओं को। बाम मार्ग गंदा मार्ग है, अच्छा मार्ग है, है? व्यभिचार का मार्ग है। उससे पहले देवताएं व्यभिचार में तो नहीं जाते थे, तो इस व्यभिचार की शुरुआत कराने वाला कौन है द्वापर युग से? कौन? अब्राहम। वाह, इब्राहिम है। फिर ये क्यों कहा ब्रह्म वाक्य में, जो पहला ब्राह्मण सो पहला क्षत्रिय ना, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो पहला ब्राह्मण सो देवता, ये क्यों कहा? जो पहला ब्राह्मण है वो पहला वैश्य नहीं बनता, विशेष नहीं बनता, द्वापर युग से बनता है या नहीं बनता? कैसे?
संघ के रंग से।
किसके संघ के रंग से बनता है?
विदेशियों।
विदेशी? अरे इब्राहिम तो बाद में आता है, पहले। हाँ, जगत पिता और जगदम्बा के बारे में मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में कथा आती है कि आदम और हव्वा को अल्लाह मियां ने जन्नत में भेजा और ताकीद कर दिया कि बाड़ी के बीच का फल नहीं खाना, और बहुत जन्मों तक वो सुख भोगते रहे जन्नत का। भूल गए? पहले कौन भूल गई? पहले माता भूलती है या पहले पिता भूलता? माता भूल गई, बुद्धि कम है ना, भूल गई जगदम्बा, भूल गई। तो उसने क्या किया? हव्वा ने आदम को बरगलाया, ये बाड़ी के बीच का फल खा के देखो ना। किसने बरगलाया? इब्राहिम ने। अरे इब्राहिम तो ऊपर से सात्विक आत्मा आती है, सतो प्रधान या तमो प्रधान आत्मा आती है, हैं? वो खराब कर्म सिखाएगी? वो नहीं सिखाती, वो जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा है गुनहगार, संग का रंग लगाने वाली। लेकिन उससे भी पहले जगदम्बा, जो सारे जगत की अम्बा है, सभी ब्राह्मणों की भी अम्बा है, जगत पिता की भी अम्बा है। कैसे? यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को ब्रह्मा बाबा के भागीदार को पहले पहले किसने सुनाया? है? बड़ी माँ जगदम्बा ने सुनाया। जिसने सुनाया मुख से वो हुआ ब्रह्मा, और जिसने सुना वो हुआ ब्राह्मण। किसने सुनाया? जगदम्बा ने सुनाया। सुनने सुनाने की शूटिंग जगदम्बा के द्वारा, और सुनने की शूटिंग ब्राह्मण चोटी के द्वारा, जिसने पहले पहले सुना, और सुनने के साथ साथ कानों से सुनने के साथ साथ कोई समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? सुनने के साथ साथ समझ लेता है या नहीं है? वो प्रवेश कर जाता है ना, तो वो सुनने के साथ साथ समझते है, समझता भी है, और फिर मुख से सुनाता भी है, उन साक्षात्कारों का रहस्य सुनाता है। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? है? जगत पिता पहला ब्राह्मण हो गया, और जिसने सुनाया वो पहली माता हो गई। लेकिन दैहिक रूप में माता या आत्मिक रूप में माता? आत्मिक रूप में माता। आत्मा पक्की पवित्र बन जाएगी तो देह से पवित्र कर्म कराएगी या नहीं कराएगी? है? आत्मा पवित्र बनेगी तो देह से पवित्र कर्म ही कराएगी। इसका मतलब वो बोलना तो जानती है, वाक देवी तो है, बड़बोली तो है। बड़बोली की निशानी मालूम क्या दिखाई जाती है? अरे बहुत बोलती है, इसकी निशानी दिखाई जाती है। कहते ना, अरे इसकी जीभ बड़ी लंबी है, माने बहुत बोलती है। ये कलयुगी दुनिया की निशानी है। आज की कलयुगी दुनिया में जो भी जगदम्बा के बच्चे हैं, महाकाली के काला कर्म करने वाले जो बच्चे हैं, हर देश में घूम घूम के देखो, उस देश में शासन करने वाले जो भी नेताएं हैं, वो बोल बोल करना अच्छा जानते हैं या नहीं जानते हैं? वो नेताएं देश देशांतर के जो गद्दी नशीन राजा बन के बैठते हैं, वो वाचा में बड़े अच्छे माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? हैं? किसकी औलाद है? जगदम्बा की औलाद। वो शूद्र हैं, शूद्रों का राज्य है, तो वो सब तामसी दुनिया के पुतले जब 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया बननी होती है, उस समय जगदम्बा के बच्चे कहे जाते हैं। जरूर उन्होंने संगव्यू की शूटिंग काल में सबसे लास्ट में भगवान को पहचाना होगा, बाप को, या पहले ही पहचान लिया होगा? है? लास्ट में पहचाना, और लास्ट में पहचानते हैं तो पुरुषार्थ कर पाएंगे, हैं? लेकिन वरदान मिला हुआ है ईश्वरीय वाणी में, क्या लास्ट सो भी फास्ट पुरुषार्थ करके राजा बन सकता है। देखो लास्ट में आते हैं नेहरू जैसी आत्माएं, क्या बन जाती है? लंबे समय के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वाचा से सारी पब्लिक को प्रभावित करते हैं, प्रजा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? हैं? बनाते हैं। देखो ये बातें जिन जिन हिंदी जानने वालों को समझ में आ रही है, वो एक काम जरूर करें, नंबर लगा लें क्लास में ट्रांसलेशन करने का। क्या? ट्रांसलेशन करके जरूर अपने भाई बहनों को सुनाएं, तो वो लंबी जीव वाले की संतान है। इस दुनिया के जो लास्ट राजाए हैं, जिन्हें कहा जाता है कांग्रेस, आज की दुनिया में क्या कहा जाता? कांग्रेस, काम के आधार पर नाम पड़ा है, हर देश देशांतर में वो कांग्रेस है। कांग्रेस माने राज्य, राजाई, कांग 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 की रेस। किसकी रेस? कांग 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 की रेस। आओ आओ आओ, हमारा भाषण सुनो। ये रेस है उनकी वाचा चलाने की। और कांव कांव करने वालों की जो रेस है, वो कौए तो हैं, लेकिन खाते क्या हैं? है? उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है?
होटल में
जाकर? नहीं, अपने भारत में ये बात प्रसिद्ध है, सन्यासी बोलते हैं, इस दुनिया के जो इंद्रियों के सुख हैं वो कागविष्ठा समान है। क्या? इस दुनिया के कर्मेंद्रियों से, खासकर काम इंद्रिय से जो सुख लिया जाता है वो किसके समान है? कागविष्ठा, कौओं की विष्ठा के समान। जैसे कौआ है ना, वो मनुष्य की विष्ठा खाता है। मनुष्यों से जो कचरा निकला उसको कौन खाता है? कौआ। मनुष्य किन्हें कहा जाता है? मननात मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन करते हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं। काहे का मनन चिंतन, झूठ का या सत्य का? काहे का मनन चिंतन? सत्य का मनन चिंतन। सत्य है आत्मा, आत्मा सत्य है, आत्मा का बाप सत्य है। उसके बारे में जो मनन चिंतन मंथन करते हैं वो है मनु की औलाद मनुष्य। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, तो वो मनुष्य ऋषि मुनि कहे गए फर्स्ट क्लास। वो आज भी भारत में हैं, जो शास्त्रों का मनन चिंतन मंथन करने में बुद्धि लगाते हैं वो है मनुष्य। अगर आत्मा परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में मनन चिंतन मंथन नहीं करते तो जानवर। क्या? जानवर हैं। तो उनके लिए कहा, वो मनुष्य जो कुछ खाते हैं उससे उनका खून बनता है, उस खून बनने के बाद जो बचता है वो क्या है? विष्ठा। उस विष्ठा को कौन खाते हैं? कौआ। क्या मतलब हुआ? अरे ऋषि मुनियों ने, जो आत्माओं ने द्वापर में और कलयुग में जो सुख भोगे हैं, देह और देह की इंद्रियों के, उन इंद्रियों से सुख भोगने के बाद लास्ट जन्म में जो शरीर मिले हैं सुंदर सुंदर, जो आज कालगर्स के रूप में माने जाते हैं, होटलों में जिनकी बहुत मांग होती है, उनको बड़े पैसे मिलते हैं। आज के नेताओं में मान्यता है ना, होटलों में बड़े बड़े होटल बनाएंगे फाइव स्टार। तो वो कागविष्ठा खाते हैं। क्या? 80, 81, 82 जन्मों में जो शरीर बने हैं लास्ट जन्मों में, उनके बाद जो शरीर बनते हैं वो शरीर एकदम कैसे हैं? विकारों से, बीमारियों से भरे पूरे हैं या स्वस्थ हैं? हैं? बीमारियों से भरे पूरे, कचरे से युक्त हैं। उनको वो भोगते हैं और राज करते हैं। तो वो कांग्रेस सरकार है जो जन्म जन्मांतर सुख नहीं पाती, लास्ट जन्म में उनको कोट पतलून मिलती है। जैसे त्रेता के अंत की कटी हुई जो सीढ़ियां दिखाई गई हैं, सीढ़ी के चित्र में, उन कटी हुई सीढ़ियों के भी तो त्रेता के अंत में कोई राजा हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? हैं? नहीं हुए। वो लास्ट जन्म में जाकर के राजा ही मिलती है उनको। उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते, दास दासी के कर्म किए हैं, विरोध किया है, सहयोग नहीं किया है ईश्वरीय काम में। कौन है वो आत्माएं? वो आत्माएं ब्रह्मा के लास्ट वाले वो ही तीन पुत्र हैं जो तीन धर्मों के बीज हैं। जो पहला है सनत कुमार वो सत्य सनातन देवी देवता धर्म का बीज है, राम वाली आत्मा। उसके बाद जो तीन भाई हैं रामायण में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी ने कहा गया है, राजगद्दी का चित्र देखा होगा राम का राजगद्दी का चित्र देखा होगा, किसने देखा? हाँ, पिक्चर में भी दिखाया गया है, फिल्मों में भी दिखाया गया है और चित्रों में भी दिखाया जाता है। उसमें दिखाते हैं कि राम गद्दी पर बैठे हैं, राम की रानी सीता भी गद्दी पर बैठी है और बाकी जो तीन भाई हैं क्या कर रहे हैं? एक छाता लेके खड़ा है धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, दूसरा पांव धो रहा है, तीसरा पंखा चला रहा है। ये काय का कर्म है, राजा का कर्म है कि दास दासी का कर्म है? अब समझा कि लास्ट की तीन गद्दियों में कौन राजा बनते हैं? हैं? ये वो ही आत्माएं हैं, वो ही तीन भाई हैं, तीन उतरती कला के धर्म के बीज, जिन बीजों ने एडवांस में आने के बाद शुरुआत में तो सहयोग दिया और लास्ट तक लगातार जब तक पूरी राजधानी नहीं स्थापन हुई विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध, विरोध ही विरोध करते रहे, अभी भी विरोध कर रहे हैं। लास्ट संदेश सुना गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा का? नहीं सुना?
सुना
उस नहीं सुना है तो सुनो, उस लास्ट संदेश का कई घंटे तक क्लेरिफिकेशन दिया गया है। उसमें एक बात आई है कि नौजवानों ने परमात्मा बांब फोड़ने का संकल्प किया है, परमात्मा बांब फोड़ करके बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। इसलिए पहले ही मुरलियों में ब्रह्म वाक्य में बता दिया बड़े से बड़ा बांब है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। बम फटता है तो क्या होता है? विनाश हो जाता है, बदबू ऐसी निकलती है सूंघने मात्र से कब टाइम नहीं लगता। तो ये ग्लानी की बदबू है, इस परमात्मा बांब को फोड़ने का बड़े से बड़ा कार्य कुमार कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के कुमार। वो परमात्मा बांब ऐसा फूट रहा है, अभी फूटना शुरू हो गया के टीवी चैनल्स में अखबारों में इतना ग्लानी का बदबू भरा विस्फोट हो रहा है और आगे चल के और ज्यादा विस्फोट होगा कि ढेर सारे बी के तो क्या एडवांस के क्या सब धराशायी हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो आठ की लिस्ट में आने वाले हैं वो भी थोड़े टाइम के लिए उनको भी माया नहीं छोड़ेगी। एक ही सत्य बचेगा और बाकी सबको माया परास्त कर देती है। बता दिया जिन्होंने भी ये प्लान बनाया है गुलजार दादी के द्वारा चलाए हुए लास्ट संदेश में बोल दिया, जिसने भी ये प्लान बनाया है देख लेना फिर से पढ़ के, उनमें से कोई 40 वर्ष के, कोई 30 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के विरोधी बने पड़े हैं। क्या माने? जब से एडवांस ज्ञान शुरू हुआ उसी समय से विरोधी बने पड़े हैं, बाप के विरोधी। क्या जो विरोधी बनता है वो आंखें लाल पीली करता है या नहीं? है वाचा से उल्टा बोलता है या नहीं? और कर्मेंद्रियों से भी हाथ पांव चलाता है या नहीं? है ऐसा भी कोई है? बीज है। कौन सा धर्म है जिसने भारत के प्रति, भारतवासियों के प्रति सबसे जास्ती दुष्ट व्यवहार किया? नहीं, इस्लामियों ने तो यहाँ 500 साल राज्य किया, ऐसा दुष्ट व्यवहार नहीं किया। भारतीयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे। कौन सा धर्म वाले हैं जिन्होंने अत्याचार किए हैं? जलियांवाला बाग याद है? क्या किया था? है गोलियां चलवा दी, हजारों हजार क्षणों में खत्म हो गए। ऐसे दुष्ट बाहुबल के धनी, और बाप क्या कहते हैं बाहुबल वाले? क्या बोला? बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे। विनाश को पाएंगे मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर विनाश हो जाएगा, उनके पद का विनाश हो जाएगा। तो कहाँ पद पाएंगे? त्रेता के अंत में। अंतिम जो तीनों सीढ़ियां हैं उनमें जो सबसे अंतिम सीढ़ी है वो भगवान का बना बनाया घर स्वर्ग को नष्ट कर देती है। इसीलिए उनके धर्म में यादगार बनी हुई है, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। उनके इबादत स्थल का नाम क्या है? गिरजाघर। वो फाउंडेशन है संकल्प का। ऐसा फाउंडेशन संकल्प का पक्का डालता है कि बस ठान लेता है कि मैं भगवान के बने बनाए घर को बिना गिराए मानूंगा नहीं, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। और सारा संगम युग वो यही धंधा करता है। वो है अब्बल नंबर। त्रेता की लास्ट गद्दी का मालिक जो आखिरी गिरा ही देता है, स्वर्ग को गिरा देता है, भगवान का बना बनाया घर नष्ट कर देता है। उससे पहला भी है एक बौद्ध धर्म का जो इस्लामियों के प्रभाव में आ जाता है। अब्बल नंबर एक और है, दो जन्म पहले गिरती कला के जो तीन जन्म हैं उनमें जो पहला इस्लाम धर्म का बीज वो आरंभ करता है संकल्पों से। संकल्पों का बीज डालने में बड़ा उस्ताद। 76 में वो संकल्प चलाने में इतना तीखा, इतना बाप का सहयोगी बना कि एक रात के अंदर ही उसने लिटरेचर तैयार कर लिया एडवांस ज्ञान का, 10-12 पेज का। उस पहले लिटरेचर का नाम है एडवांस ज्ञान में शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उसकी कॉपी अभी छप रही होगी या आ गई होगी। पहला लिटरेचर
हमारे पास तो है।
हाँ जी, तो वो संकल्प मात्र करता है और वाचा चलाने में बड़े होशियार सन्यासी बौद्ध धर्म के, वो उसे वाचा में भी लाते हैं और कर्मणा में लाने वाला लास्ट धर्म कौन सा? अरे नास्तिक क्रिश्चियन, वो कर्मणा में ला देते हैं उस संकल्प को, जो पहले ने संकल्प मात्र किया। संकल्प का उतना पाप नहीं बनता, वाचा का ज्यादा पाप बनता और कर्मेंद्रियों का बड़ा पाप बन जाता, इसलिए वो लास्ट गद्दी का मालिक। संकल्प मात्र जिसने बीज डाला वो इतना खतरनाक है, उसके अंदर ये संकल्प ही चलता रहा लगातार। दिल्ली में जब तक एडवांस ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा, बस यही संकल्प कि बड़ा भाई है, मैं बड़े भाई का भाई हूं, तो बड़ा भाई मेरे को कुछ नहीं सुख भोगने देता, सारा सुख खुद ही भोग रहा है। वो संकल्प उसको ज्यादा मदद करता है छोटी भाई के कार्य में। और दिल्ली से वो बना बनाया घर उजड़ जाता है, मनुष्य सृष्टि के बाप को धक्के खाने पड़ते हैं। काहे के कौन से धक्के प्रसिद्ध हैं? अरे जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने क्या धक्के खाए? बुद्ध को देश निकाला मिल गया,
निकाल दिया गया।
क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? वो तो छोटे छोटे धर्म पिताएं थे, उन धर्म पिताओं का भी बाप ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रेट कहा जाता है, वो तो कितने धक्के खाता होगा। ये धर्म के धक्के प्रसिद्ध हैं, और बाप ने जो धर्म के धक्के खाए हैं, माला में आने वाले बच्चों को भी वो धक्के जरूर खाने पड़ेंगे। धर्म के धक्के नहीं खाएंगे तो धर्म में ऊंचा पद नहीं पाएंगे। ओम शांति।